आइए अब हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं। हमारे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महान सृष्टिकर्ता, जो यीशु को मृतकों में से फिर से वापस ले आया और हमारे साथ इन 2000 वर्षों से जीवित है, अपने वचन की पुष्टि करने के लिए सदा जीवित है और हर पीढ़ी में इसे सच्चा ठहराता है। इस समय हम उसकी दिव्य उपस्थिति के लिए बहुत ही धन्यवादित हैं, ये जानते हुए कि हमारे पास ये एक महान आश्वासन है कि इस जीवन के पूरा हो जाने के पश्चात हमारे पास इस आने वाले जगत में अनंत जीवन है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। और वो आशा प्राणों के लिए लंगर, जो कि तूफान के समय में एक निश्चित रूप में स्थिर रहता है, और जब तूफान आता है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसमें विश्वास करने के द्वारा हम अनुभव करते हैं कि हम लहर को प्रेम से स्पर्श कर सकते हैं। आज रात्रि परमेश्वर हमारी सहायता करे जब हम रोगियों की सेवा के लिए आते हैं और आवश्यकता में पड़े लोगों की। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब आज रात्रि हम यहाँ से जाते हैं तो एक भी रोगी व्यक्ति हमारे मध्य में ना हो। होने दे कि तेरी दिव्य सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति चंगा हो यहाँ और सारे राष्ट्र में जो प्रसारण द्वारा सुन रहे हो। होने दे कि एक भी निर्बल व्यक्ति किसी भी भवन या किसी झुंड में से आज रात्रि बाहर ना जाए। आपका आत्मा उन्हें चंगाई दे। धर्म का महान सूर्य अपने पंखों में चंगाई के साथ उठे और विश्वास की किरणें प्रत्येक हृदय में, जैसे कि ये वचन को सुनते हैं, पहुंच जाए। पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को देखें, उन्हें स्वीकार करवाएं कि वो अब भी जीवित है। इन आशीषों के लिए हम पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हम निश्चय ही इस अच्छे विशेषाधिकार को समझते हैं कि फिर से आज रात्रि यहाँ पर हैं कि लोगों से बोलें और बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो इस प्रदेश से बाहर टेलीफोन को फिर से जोड़े हुए हैं और सारे राष्ट्र में, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीषित करेगा। विश्वास करते हैं कि वे सब जिन्होंने मसीह को इस प्रातः स्वीकार किया है, वे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और जब तक पृथ्वी पर जीवन समाप्त ना हो जाए सदा विश्वासी योग्य और उसके प्रति सच्चे रहेंगे इस मरणहार जीवन में, और तब उनके इस करने के द्वारा उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। वे इस आने वाले युग में कभी नहीं मरेंगे, उस महान युग को जिसकी हम राह देखते हैं। अब हम ये कहने जा रहे हैं, जबकि मैं इस पर सोच रहा हूँ, विघ्न डालने के लिए नहीं, भाई वाइल यहाँ है और संभव है मैं इसे देख नहीं सक रहा हूँ। मैं कर क्या मैं ये लेख आपके पास भेज सकता हूँ? जब मैं ट्यूशन वापस जाता हूँ मैं इसे देख रहा हूँ, अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, और जैसे ही ट्यूशन वापस पहुँचूंगा मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा। अब मैं उद्घोषणाएं करना चाह रहा हूं, ये विशेषकर कलीसियाओं के लिए हर जगह, विशेषकर पश्चिम में या कहीं भी जो आना चाहते हैं। हमारे अच्छे भाई पेरीग्रीन यहाँ, ये वो व्यक्ति है जो कि इस टेलीफोन प्रसारण को प्रोत्साहित करने वाला है। प्रभु ने उसके हृदय में ये दिया कि वो यहाँ ट्यूशन में आकर हमसे मिले और ट्यूशन में बेदारी आरम्भ करे, जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। और भाई पेरी ट्यूशन में होंगे, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो हमारे वहाँ के दफ्तर से संबंध स्थापित करें। ये अगस्त की 10वीं, 11वीं और 12वीं और 13वीं में होगी। उसके हृदय पर ये बहुत समय से था और मैंने उसे बताया कि केवल एक मार्ग है कि इसे अपने हृदय से उतारें कि जाकर इसे करें। और वो एक मसीही भाई है, परमेश्वर का वास्तविक दास, और आप जो ट्यूशन में हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग आशीषित होंगे, जैसे कि वो वहीं कहीं सेवकाई करता है, संभवतः रमादा इन या जहां कहीं भी प्रभु स्थान देता है, उसे यहां नहीं मिला। परंतु मैं जानता हूं कि आप आकर भाई ग्रीन को सुनेंगे तो आशीषित होंगे, जैसे कि वो परमेश्वर के वचन को समझाते हैं, संभवतः बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के अभिषेक में करने के लिए जो भी होता है। हम भाई ऑर्मन नेविल के और भाई मान का भी धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय और उनके साथ संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं कितना आभारी हूँ कि मैं भाई नेविल, भाई मान जैसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ आसपास के सारे सेवक गण, मैं समझता हूँ उन्होंने पहचान लिया है। यदि आप हमारे बोर्ड या हमारी कलीसिया से जो यहाँ है नहीं है, तो मैं निश्चित हूँ कि परमेश्वर आपको अपने सेवकों के समान पहचानता है। होने पाए कि प्रभु आपको सदा आशीष दे। अब मुझे एक छोटी सी टिप्पणी लिख कर दी गई है और उसमें मुझसे छोटी सी बात पूछी गई है। एक रात्रि उन लोगों की यहाँ ट्रस्टी सभा हुई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और डीकन, और मैं सोचता हूँ कि कार्य विवरण आज प्रातः कलीसिया के सामने पढ़ा गया, जो कि ये करना हमारे लिए रिवाज है। वे निर्णय जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और डीकनों के द्वारा लिए गए हैं, प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मेरा ट्रस्टी बोर्ड से कोई मतलब नहीं या डीकन बोर्ड से, मेरा उसमें मत भी नहीं है। जब तक वहाँ बराबरी ना हो तो फिर ये करने के लिए मुझे यहाँ होना है। भाई नॉर्मन नेविल दूसरा वोट लेते हैं, तब हमें इस पर हस्ताक्षर देने होते हैं क्योंकि हम कलीसिया के भाग हैं। परंतु ट्रस्टी बोर्ड, वे बोर्ड के निर्णय जो वे लेते हैं, हम निश्चय ही 100% उनके पक्ष में होते हैं क्योंकि वे इसीलिए यहाँ पर हैं, और उनके निर्णय उनके और परमेश्वर के बीच में है। मैं किसी भी प्रकार से उनके निर्णय से मतभेद ना तो हो सकता है ना होएगा। और दूसरी बात, संयुक्त राज्य की सरकार द्वारा मुझे कोई भी निर्णय लेने की मनाही है इस संबंध में, इसलिए उनके निर्णय को ठीक करने के लिए मुझसे ना कहें। मैं इसे नहीं कर सकता और मैं इस विषय में कुछ भी नहीं सुनूंगा, समझे? इसलिए उनके निर्णय को ठीक करने के लिए मुझसे ना कहें। आप देखिए कि बोर्ड ही है जो निर्णय को करता है। अब आने वाली सभा में ये संभव है, यदि प्रभु चाहेगा तो मैं यहाँ 4 से 6 सप्ताहों में वापस आऊंगा, या ऐसे ही कुछ हो सकता है, दूसरे रविवार की सभा के लिए। इस प्रातः मैंने घोषणा की है कि मैं परमेश्वर अपने वचन में प्रकट हुआ उस पर बोलूंगा, और आज रात्रि मेरे पास समय नहीं होगा और खुले रूप में मेरे पास ये करने के लिए मेरे पास आवाज नहीं है। और फिर भीड़ वहाँ जितने बाहर हैं उतने अंदर हैं, संभवतः अधिक, उन बसों और ट्रकों और चीजों जो बाहर जिसमें लोग बैठे हैं, वो छोटा प्रसारण उसको बढ़ाया है थोड़ा सा कि हम सुन सकें। ये छोटा प्रसारण आराधनालय से शॉर्ट वेव, हम इसे कॉलोनी खंड की दूरी से पकड़ सकते हैं, और कुछ कारें बहुत सी कॉलोनियों खंड की दूरी से कारों की कतारें ऊपर नीचे और चारों ओर गलियों में आज रात्रि आराधनालय के चारों ओर हैं। मैं नहीं विश्वास करता कि कभी भी इतने लोगों का जमघट कभी यहाँ अंदर और आराधनालय के चारों ओर हुआ जितना आज है। इसलिए हम लोग और बहुत सारे बहुत बहुत कार चलाकर आए और वापस चले गए। इसलिए ये दर्शाया जाता है जहाँ लोथ है उकाब जमा होंगे। और मैं आपसे आज रात्रि इस लोगों के झुंड में ये कह सकता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय झुंड है। व्यवहारिक रूप में संयुक्त राज्य के 2/3 का यहाँ प्रतिनिधित्व है, 5 विदेश के राष्ट्रों को छोड़, यहाँ तक कि रूस और राष्ट्र के विभिन्न भाग के लोग, नीचे वेनेजुला, बाहर जमैका, राष्ट्र का सारा विभिन्न भाग, यहाँ के लोग यहाँ हैं, परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं। क्या ही शानदार समय है। अब बाइबल को पढ़ने से पहले क्या आप अब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैं एक छोटा सा संदेश लाने का यत्न करने जा रहा हूँ, प्रभु चाहेगा तो दिव्य चंगाई के अनुसार, क्योंकि इस प्रातः हमने उद्धार के विषय में बातें की और आज रात्रि हम दिव्य चंगाई के ऊपर कुछ मिनटों के लिए बोलने जा रहे हैं, और तब प्रार्थना पंक्ति को बुलाएंगे और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जबकि हम इस प्रसारण के द्वारा ये कह रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हों, यहाँ तक कि बाहर बसों और कारों में चारों ओर और आराधनालय से खंड या 2 खंड के अंदर अंदर, जब रोगियों के लिए प्रार्थना करने का समय आता है, यदि आप भवन के भीतर नहीं आ सकते, जैसा कि आप नहीं आ सकते, अब मैं इसके लिए निश्चित हूँ, क्योंकि दरवाजों के रास्ते भीड़ से ठसे हुए हैं और कहीं भी कोई स्थान नहीं है, इसलिए आप प्रार्थना करें और एक दूसरे पर अपने हाथ रखें, और प्रत्येक सेवक जो आज रात्रि इस प्रसारण से जुड़ा है अपनी सभा कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जब चंगाई सेवा चल रही हो। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर स्थान में सर्वव्यापी है। अब इससे पहले हम पढ़ें या इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने अपना वचन का भाग बदल दिया क्योंकि सभा का रूप बदलना चाह रहा था, जो कि मैंने अपने विचार में आज रात्रि के लिए तय किया था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बदल दिया है। इसलिए मुझे अपना पवित्र लेख बदलना पड़ा, उन्हें बदलना नहीं परंतु उसे दूसरे क्रम में व्यवस्थित किया है, दिव्य चंगाई के क्रम में, ताकि लोग समझ जाएंगे। आइए संत लूका का 24वां अध्याय निकालें और हम 24वें अध्याय के 12वें पद से आरंभ करेंगे और लगभग 34वें तक पढ़ेंगे। ये प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर है। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलम से कोई 7 मील की दूरी पर था। अब ये 10 फरलांग का 1 मील बनता है, इसलिए ये लगभग 6 मील था। और वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, वे क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। और ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? अब स्मरण रखें, ये यीशु स्वयं जी उठकर उनसे बातें कर रहा है। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर गई थीं। और जब उसकी लोथ ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। अब सुने यीशु, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने उसे ये कहकर रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और अब दिन बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलम को लौट गए और उन 11ों और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। अब हम प्रार्थना करें। प्रिय अनुग्रहकारी पिता, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन सच्चा, तेरा वचन जीवन है, और प्रभु तू और तेरा वचन एक हैं। इसलिए प्रभु हम आज रात्रि प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मध्य में पुनरुत्थान की सामर्थ में आएंगे और आज रात्रि हमें दर्शाएंगे उनके समान जो अमाउस से आए कि हम ये कहते हुए अपने घरों को भी वापस जाएं। क्या हमारे हृदयों में उत्तेजना न हुई? प्रभु इसे प्रदान करें। ये अब फिर सांझ की ओर है क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं इस बाइबल के संबंध में बोलना चाहता हूँ और मेरा आज रात्रि का विषय इसके शीर्षक के लिए घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। अब बाइबल और पवित्र पुस्तकों से भिन्न पुस्तक है। बाइबल भिन्न पुस्तक है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, आने वाली घटनाओं को बताती है और यीशु मसीह का प्रकाशन भी है। ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक उसे उसकी परिपूर्णता में लाती है, वो क्या था और है। और सारी पुस्तक प्रकाशित वाक्य एक से तीन में कहा, ये पुस्तक यीशु मसीह के प्रकाशन की पुस्तक है जो कि परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन। अब सारी पुस्तकें, पवित्र पुस्तकें केवल आचार शास्त्र की नियमावली हैं, आचरणों की नियमावली या धर्म विज्ञान की नियमावली, कुछ ऐसा ही। कितनों ने कुरान को कभी पढ़ा है? मुसलमानों की बाइबल और बुद्ध लोगों की पुस्तक और आदि आदि, ये आचार शास्त्र की नियमावली है कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, उन्हें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। परंतु ये भविष्यवाणी नहीं करती, इन बातों के विषय में कुछ नहीं कहती या किसी विशेष दान के लिए जो किसी को दिया गया हो कि कुछ घटित होना है, जैसे किसी रहने की जगह में सम्मिलित हो जाना या ऐसा कुछ। इसलिए जब कलीसियाएं एक स्थान में आती हैं कि वो अपनी कलीसिया को रहने के लिए सम्मिलित होना, तब वे परमेश्वर के वचन से अलग भटक जाते हैं, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह की जीवित पहले से बताई गई गवाही है। और जैसे कि पृथ्वी अपनी भरपूरी में बढ़ गई है और दाखलता भी अपनी परिपूर्णता में बढ़ गई है, दिन भी पूरे हो रहे हैं, बाइबल यीशु मसीह व्यक्ति में पूरे रूप से प्रकट हुई। वो परमेश्वर का प्रकाशित किया हुआ वचन था, छुटकारे की संपूर्ण पूरी पुस्तक। बाइबल परमेश्वर का वचन है, आने वाली बातों को पहले से बता रहा है। इसके विश्वास करने वाले लेखक के द्वारा निर्देशित होते हैं कि इसे पढ़ें और इसके प्रत्येक शब्द का विश्वास करें, न कि इसके किसी एक भाग का। इसके एक वचन का अविश्वास, आप इसे छोड़ने का यत्न कर रहे हैं जब तक आप उस वचन का विश्वास नहीं कर लेते। प्रत्येक वचन पूर्णतः सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भाग है। परमेश्वर प्रकट हुआ, उसके वचन की क्षति ये दर्शाता है कि वो कौन है। विश्वासी होने के नाते हमें आज्ञा मिली है कि इसके प्रत्येक वचन का विश्वास करें, और ये स्वयं परमेश्वर लेखक के द्वारा लिखी गई है। इसमें कोई भी कुछ नहीं मिला सकता या इसमें से कुछ नहीं निकाल सकता। यदि आप करते हैं तो ये परमेश्वर की तमाशे की देह है। ये ऐसे ही होगी मानो जैसे हम एक हाथ में छह उंगलियां या तीन हाथ या किसी चीज में कुछ मिला दिया या इसमें से कुछ निकाल लिया और एक हाथ कम हो गया, एक उंगली कम हो गई। ये यीशु मसीह की संपूर्ण देह है और मसीह में नर होने के नाते से दूल्हा दुल्हन उसमें प्रतिनिधित्व करती है और ये दोनों एक हैं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में। कितना परिपूर्ण चित्र। और इस वचन में सच्चे विश्वासी जो इसे ऐसे ही स्वीकार करते हैं और इसका विश्वास करते हैं और की गई भविष्यवाणी की प्रतिज्ञाएं और उनमें से प्रत्येक अपने समय में प्रकट होती है, हर विश्वासी ने इसे देखा है। हर विश्वासी जो तत्पर रहता है ध्यान से देखता है, यही है जो प्रकट हुआ। अब प्रभु यीशु के आगमन के दिनों को देखिए, क्यों उन लोगों ने यूहन्ना को नहीं पहचाना, जबकि बाइबल यशायाह के द्वारा स्पष्ट कहती है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग को तैयार करो। उनका अंतिम भविष्यद्वक्ता उनके पास था जो कि मलाकी 3 है, कहा देखो मैं अपना दूत अपने आगे मार्ग तैयार करने के लिए भेजता हूँ। उन्होंने इसे क्यों नहीं देखा? क्योंकि वे किसी और चीज को देख रहे थे जो कि किया जा रहा था, अपने विचारों को किसी और संदेश पर आधारित कर रहे थे जो पहले आया था, और परमेश्वर के उपस्थित प्रकटीकरण को देखने में असफल रहे जिस दिन में वे जीवित थे। और मसीही लोग हर जगह ठीक यहीं पर आज रात्रि संसार खड़ा है, निस्संदेह ये सत्य है। हर जगह मसीही लोग आचार संहिता को मुड़कर देखने का यत्न कर रहे हैं जो कि श्री लूथर ने लिखी या श्री वेस्ली, सैंकी, किनी, नॉक्स, कॉल्विन ने, जिसकी हम में से कोई निंदा नहीं कर सकता, परंतु वो बीते दिनों में था जो मूसा ने कहा। फरीसियों ने उसे ही मुड़कर देखा और उन्होंने कहा हमारे पास मूसा है, हम नहीं जानते कि तू कहां से आया। परंतु स्मरण रखें, जब मूसा यहां पर था वे नहीं जानते थे कि वो कहां से आया, समझे? और अब वे, कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने उनसे कहा तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो और तुम ही ने उन्हें वहां रखा। उनके संदेश के चले जाने के पश्चात संदेश निकलता है, लोग इसे देखते हैं, फेस का उपहास उड़ाते हैं, संसार करता है। और तब संदेश वाहक के चले जाने के पश्चात और संदेश पूरा होने के पश्चात तब वे इस संदेश को नामधारी बनाते हैं और वे वहां मर जाते हैं ठीक वहीं, और फिर जीवन तक नहीं आ पाते। एक क्षण के लिए कुछ लोगों को देखें, विशेषकर मैं आप कैथोलिक लोगों से बोल रहा हूं। क्या आप अनुभव करते हैं? क्या आपने कभी उस वास्तविक इतिहास में पढ़ा है, रोमन कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में, कि किस प्रकार आपकी शहीदी पुस्तक में जब से संत अगस्तीन ऑफ हिप्पो, कितने करोड़ भोले लोगों को उस कलीसिया ने मार डाला? मैं भूल गया, सही गिनती नहीं याद है, परंतु ये करोड़ों में है। जब से संत हिप्पो, संत अगस्तीन हिप्पो, हिप्पो का अफ्रीका ये घोषणा कर दी कि ये ठीक परमेश्वर की इच्छा है कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया का प्रतिवाद करता है उसे मार डालो, क्या आपने इसमें अनुभव किया कि संत पैट्रिक को जब तक ना पहचाना गया जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई एक रोमन कैथोलिक के समान? उसने पोप का विरोध किया और उसके सारे कार्यकलापों का, और कैथोलिक कलीसिया स्वयं ने अपने दसियों हजार बालकों को मार डाला। क्या आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया ने जॉन ऑफ आर्क को जलाया, उस छोटी संत महिला को अग्निदंड, कहा कि वो जादूगरनी थी। 200 वर्ष पश्चात उस याजकों की लाश खोदी जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो गलत था, और उन्हें बिना पवित्र भूमि में गाड़े समुद्र में फेंक दिया कि प्रायश्चित करें। उस दिन को यूं ही ना भूल जाएं और मूर्ख बने। कैसे वे याजक आज रात्रि चाहेंगे कि सामने आए जिन्होंने यीशु को दोषी ठहराया? केवल एक ही बात कि उन्होंने समय की भविष्यवाणी को कभी नहीं देखा। यदि वे, यीशु ने कहा पवित्र शास्त्र में ढूंढो, तुम सोचते हो कि उसमें, या बल्कि तुम दावा करते हो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है और पवित्र शास्त्र तुम्हें बताता है कि मैं कौन हूँ, उस घड़ी के लिए ध्यान दे, बाइबल असफल नहीं हो सकती। ये एक चीज है जो ये नहीं कर सकता कि परमेश्वर का वचन असफल हो जाए, क्योंकि ये अपने लेखक के कार्य को उसके करने से पहले बताता है। हजारों में से एक अवसर होता है कि मनुष्य भविष्यवाणी करे कि कुछ और घटित होने जा रहा है और वो घटित हो, परंतु यदि वो स्थान को बताए कि कहा घटित होगा तो अवसर 10,000 में से एक अवसर हो जाता है, उसकी संभावना कम हो जाती है। यदि वो दिन बताता है कि उस दिन घटित होगा तो संभावना और कम हो जाती है, 10,00,000 में से एक, और किसके साथ घटित होने जा रहा है तो इसकी संभावना करोड़ों में से एक हो जाती है। परंतु ये बाइबल आपको बिल्कुल ठीक बताती है कि कौन, कब, कहां, क्या देखें, और एक बार भी असफल नहीं हुई। इसलिए अधिक समय नहीं हुआ, एक वार्तालाप में सीक्रेट हार्ट के एक पादरी के साथ उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, आप बाइबल को एक तर्क बनाने का यत्न कर रहे हैं। कहा, ये तो कलीसिया का एक इतिहास है। मैंने कहा, ये इतिहास नहीं है, ये परमेश्वर स्वयं एक छपाई में है। उसने कहा, परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा, परमेश्वर अपने वचन में है, और इसके विरोध में जो कुछ भी है वो झूठ है, क्योंकि उसने कहा, मेरा वचन सच्चा और हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे। उसने कहा, हम तर्क वितर्क के लिए नहीं है। मैंने कहा, मैंने आपसे तर्क वितर्क के लिए नहीं कहा, परंतु बाइबल कहती है, आओ हम वाद विवाद करें। ये लेखक के करने से पहले उसके कार्यों को बताती है। इसलिए ये बताते हुए ये प्रत्येक पुरुष और महिला को बिना किसी बहाने के न्याय के कटघरे में खड़ी करती है। यदि आप बोलेंगे जो इसके विषय में मेथोडिस्ट बताती है, जो बैप्टिस्ट इसके विषय में बताती है, कैथोलिक बताती है, जो पेंटिकॉस्टल इसके विषय में कहते हैं, या कोई और कलीसिया, तो आपको न्याय में निराशा मिल सकती है। परंतु यदि आप ध्यान दें कि जो बाइबल कहती है वही घटित होने जा रहा है, और जब ये घटित हो जाता है तब आप पहचानेंगे कि क्या घटित होता है। ये वो जो सब लोग देखते हैं वैसा ही स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने इसे ज्ञानियों बुद्धिमानों की दृष्टि से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। ऐसे ही लोग समझेंगे। सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन पर सामर्थ के साथ धनवानों और समझदारों को अंधा करता है, और शिक्षा प्राप्त ज्ञानियों की आंखों को अंधा करता है, ताकि वे उसे न देख सकें, और निर्धनों और अनपढ़ों की आंखें को खोल देता है। इन अमाउस के लोगों पर ध्यान दें। उसने कहा, उनकी समझ उसके विषय में रुकी हुई थी। उन्होंने उससे बातें की और जान नहीं पाए कि दिन भर उनके साथ कौन था। परमेश्वर यह कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। बिल्कुल ठीक यही उसने उन याजकों शास्त्रियों के साथ कर दिया, क्योंकि ये लिखा था कि उसे यही करना था। परमेश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी ताकि हमें अवसर मिल सके। ध्यान दें, वे नहीं देख सकते थे। इससे कोई मतलब नहीं कि वे कितने ज्ञानी, कितने याजक थे, उन्होंने क्या किया, वे अब भी इसे नहीं देख सके क्योंकि वे अंधे थे। शारीरिक रूप में उनकी आंखें 20-20 हो सकती थी, परंतु उनकी आत्मिक आंखें ठीक यही बात आज प्रातः मैं व्यभिचारी स्त्रियों के विषय में कहने का यत्न कर रहा हूँ। जिस प्रकार से वे वस्त्र पहन रही हैं, वे व्यभिचारिणियां हैं। परमेश्वर की पुस्तक में वे दोषी हैं। जब भी वे वासना युक्त दिखने वाले वस्त्र पहनती हैं, उनके प्राण ये नहीं जानते। मैं विश्वास करता हूँ कि उन स्त्रियों में से बहुत सारी, उनमें से हजारों निर्दोष हैं और किसी भी प्रकार व्यभिचार नहीं करेंगी। और बेचारी स्त्रियाँ जो उन्हें इसके साथ बिना इसे प्रकट किए होने देता है और सत्य बताता है कि व्यभिचार किया गया, जो बाइबल ने कहा, वेश्या जो बहुत से पानियों पर बैठी है, पृथ्वी के सारे राजाओं और पृथ्वी के लोग, कलीसियाओं आदि आदि ने इस स्त्री के साथ आत्मिक व्यभिचार किया, और ये वेश्याओं की माँ है, नामधारी। हम बाइबल को ध्यान पूर्वक देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अंधकार में नहीं छोड़ता। उसने बाइबल को पहले से हमें ये बताने के लिए भेजा, इससे पहले कि घटनाएं घटित हों, और उसका वही स्वभाव और समय जिसमें वे आएंगे। अब ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि कौन सी दिनांक है के लिए कैलेंडर को देखना। यदि आप सोचते हैं, कहते हैं कि ये क्या है, ये शनिवार रविवार ये क्या है, तो कैलेंडर को देखिए। कैलेंडर आपको बताएगा कि कौन सा दिन है। जब आप लोगों के व्यवहार को देखते हैं, हो सकता है वे आराधनालय को जाते हों, आप देखते हैं कि घंटे बज रहे हैं, आपको आश्चर्य होता है कि आज कौन सा दिन है। आप कैलेंडर को देखिए, ये आपको बताएगा कि कौन सा दिन है। और जब आप कलीसिया को संसारिक होता देखें, जैसे कि ये सादोम के दिनों में था, देखिए कि संसारिक कलीसिया सब उसमें जा रहे हैं, इस दुष्ट युग के ईश्वर की आराधना, और ये देखते हुए तब आप छोटे से अल्पसंख्यक झुंड को परमेश्वर की प्रेरणा में एकत्र होते हुए देखते हैं, और वो फिर से यीशु मसीह के जीवन को पवित्र वचन के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको कि घटित होना है। आप जानते हैं कि आप कौन सी घड़ी में रह रहे हैं। बाइबल भविष्यवाणी के द्वारा बताती है कि हम किस दिन में जी रहे हैं और किस समय में जी रहे हैं और किस प्रकार की घटना को घटित होना चाहिए। ये शब्द दर शब्द सही सही पहले से बताती है और सारे समय में एक भी युग में नहीं चूकी, एक बार भी नहीं चूकी और ना ही चूकेगी, क्योंकि जो इसे देखने के लिए पहले से ठहराए हुए हैं इसे देखेंगे। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता उसे ना खींच ले, और वे सब जिनको पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। ये वचन वचन के साथ मिलता है, ये और कुछ नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं कि वो जिस दिन में हम रह रहे हैं, परंतु ये हर युग में हुआ कि लोग मनुष्य अपना अनुवाद वचन में मिलाता है और होने वाली घटनाओं के प्रति उन्हें अंधा कर देता है। फरीसियों और सदूकियों के साथ ठीक यही हुआ। यहाँ तक कि पौलुस वहाँ पर खड़ा हुआ वचन का उल्लेख कर रहा था और एक मनुष्य ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा क्योंकि उसने एक महायाजक को चुना फिरी भीत कहा, और तब वे परमेश्वर द्वारा भविष्यवाणी के वचन की पुष्टि को देखने में असमर्थ रहे। देखिए, बाइबल स्वयं में विरोधाभास नहीं है, बाइबल परमेश्वर है, परमेश्वर में कोई विरोधाभास नहीं है, वो सिद्ध है। परंतु लोग अपने अनुवाद के साथ, अब ध्यान दें मित्रों, मैं आपको दिखाऊं, कलीसियाएं इसके अनुवाद पर स्वयं सहमत नहीं होंगी। मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के साथ सहमत नहीं हो सकती, बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन के साथ, प्रेस्बिटेरियन पेंटिकॉस्टल के साथ, और पेंटिकॉस्टल की लगभग विभिन्न 40 संस्थाएं वे एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते। इसलिए आप देखिए, ये फिर से बाबुल होगा, भ्रम। परंतु परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद करता है। उसने एक बात की प्रतिज्ञा की और उसे स्वयं पूरा किया। वो स्वयं इसका अनुवाद करता है क्योंकि वो स्वयं को उस घड़ी में प्रकट करता है। मसीह की देह कितनी आगे बढ़ गई है, पैरों से सिर तक। ध्यान दे, यही कारण है कि लोग पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इसके विषय में कौन क्या कहता है वे सुनते हैं बजाय इसके कि वचन पढ़े, जैसा कि यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा, और वे ही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। पवित्र वचनों में ढूंढो, तुम सोचते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलता है, और वे ही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। दूसरे शब्दों में सुनिए, वचन में क्या पढ़ते और देखते हो कि मसीह क्या करेगा। देखो कि मसीह को किस समय में आना है, देखो मसीह के आगे आगे कौन चलने वाला है। उस घड़ी को देखो, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, यूहन्ना, और तुमने जो चाहा उसके साथ किया। देखो मुझे क्या करना था जब मैं आया, और अब तुमने क्या किया, क्या मैं इसके साथ मेल खाने में असमर्थ रहा। देखो यीशु बोल रहा है, क्या मैं इसको पूरा करने में असमर्थ रहा। ध्यान दें, जैसे कि दोपहर पश्चात हम इस पवित्र शास्त्र में से होते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से हर चीज जो उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी बिल्कुल वैसे ही घटित हुई जैसे होना था। उन्हें ये घटना मालूम होनी चाहिए थी। ये लगभग 33 वर्षीय सन की उठ खड़ा हुआ है या 30 वर्षीय, और वहाँ जाकर और सब प्रकार की ज्योतियों का दावा कर रहा है, और पंडुकियाँ ऊपर की ओर उठी, और क्यों? ये एक प्रकार से अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि उसका जन्म अवैध माता पिता से हुआ और दावा कर दिया कि वो कुंवारी से जन्मा था। क्या उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए था कि यशाया 9:6 में ये कहा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ? क्या उन्हें ये नहीं मालूम होना चाहिए था कि यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है एक कुंवारी गर्भवती होगी? उन्हें ये बातें मालूम होनी चाहिए थी। परंतु आप देखिए, जो बातें वे उस पर लागू कर रहे थे वो कहीं और आगे की थीं, और उनके लिए ये मनुष्य उन विशेष बातों से मेल नहीं खाता था। परंतु उसने उनसे पूछा, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वे ही बातें हैं जो मेरे संदेश की गवाही देती हैं, ना कि वो जो धर्मज्ञानी ने कहा, परंतु जो परमेश्वर ने कहा, उसके अपने वचन ने कहा कि घटित होगा। आमीन। इसलिए ये अब वैसा ही है, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि वही बताता है कि हम कौन सी घड़ी में जी रहे हैं, हमें ठीक ठीक बताता है कि आज के दिन क्या घटित होगा। ये वे हैं जिन पर आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो व्यक्ति यीशु मसीह की गवाही देते हैं, क्योंकि बाइबल ने कहा कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, क्योंकि वो इस युग में वचन का प्रकाशन है, भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के अनिवाद को सुनने के द्वारा वे देखते हैं। परमेश्वर के वचन को पूरा होने की पुष्टि होती है। वे इसे देखने में असमर्थ रहे क्योंकि ये हर समय होता रहता है, परंतु क्योंकि वे सुनते हैं और यीशु ने कहा कि वे अंधे अगुए हैं और यदि अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो उन्हें क्या होगा। अब स्मरण रखें कि बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि इस लुदेशियन युग की चर्च संबंधी पीढ़ी अंधी थी। उन्होंने उसे कलीसिया से बाहर कर दिया। कोई दूसरा युग नहीं, दूसरी कलीसिया नहीं जहां यीशु बाहर था, परंतु लुदेशिया कलीसिया इकाल, वो बाहर की ओर था, अंदर आने का यत्न कर रहा था। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, उसे अंदर होना चाहिए, परंतु उसने कहा क्योंकि तुम कहते हो मैं धनी हूँ, चीजों की भरपूरी है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और नहीं जानते कि तुम अंधे हो और अंधों की अगुवाई कर रहे हो, आत्मा में दरिद्र, दुखी, तुच्छ, नंगा, और ये नहीं जानता। क्या ही यदि कोई मनुष्य सड़क पर नंगा हो, तुच्छ, अंधा, और जानता हो कि उसके पास इतनी चेतना हो कि आप उसे बता सकें कि वो नंगा था, कि वो इस विषय में कुछ करना चाहेगा, परंतु जब वो अपना सिर हिलाता है और कहता है मैं ये नहीं लूंगा, तुम कौन हो कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब यदि ये दयनीय अवस्था नहीं, मैं नहीं जानता, और ठीक यही जो इस बाइबल के परमेश्वर ने कही कि कलीसिया इस दुष्ट युग में जो अब है होगी, अंतिम कलीसियाई काल में जहाँ हम जी रहे हैं। ध्यान दें, परंतु लोगों के लिए जितनों से प्रेम करता हूँ मैं ताड़ना करता हूँ। जो आप कर रहे हैं उसके लिए यदि प्रभु से आपकी ताड़ना हुई है तो फिर बाहर निकल आइए, उससे अलग हो जाएं। जितनों से मैं प्रेम करता हूँ उनकी ताड़ना करता हूँ। अब परमेश्वर को देखते हुए, अब क्या हो यदि वे फरीसी ये कहें कि एक मिनट रुको, उस व्यक्ति ने हमें चुनौती दी है, उसने कहा है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, वे मेरी गवाही देते हैं। ये अच्छा होगा कि पवित्र शास्त्र में देखकर और ढूंढ लूं कि उसे क्या करना चाहिए, ये कौन है, क्या घटित होना चाहिए, मैं पीछे पलट कर देखूं और खोज लूं, बजाय इसके कि याजकों के पास जाकर उनसे पूछूं इस विषय में क्या है। भिन्नता को देखिए, उन्हें वचन को पढ़ना चाहिए था। इब्रानी 1:1 में बाइबल ने कहा परमेश्वर ने अलग अलग समय में जो कि पुराने बीते समय थे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भिन्न प्रकार से बाइबल लिखवाई। अब ध्यान दें, अपने ही चुने हुए ढंग से उसने बाइबल को लिखा, देखा। अब उसे इस प्रकार से नहीं लिखवाना था, ना ही उसे मनुष्य को लहू द्वारा बचाना था, उसे मनुष्य के द्वारा बाइबल प्रचार नहीं करानी थी। वो सूर्य या चंद्रमा या सितारों से सुसमाचार प्रचार करवा सकता था, वो सुसमाचार को हवा से सुसमाचार को बुलवा सकता था, परंतु उसने मनुष्य को चुना, उसने मार्ग को चुना, उसका वचन आया, और ये उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा था जो कि पहले से ठहराए और अभिषिक्त थे, परमेश्वर के वचन का भाग होने के कारण उस युग और उस समय में उसके वचन के प्रकाशन की घोषणा कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल भविष्यवक्ताओं के पास आता है, ये कभी भी धर्म ज्ञानियों के पास नहीं आता, मुझे पवित्र लेख दिखाओ, ये केवल भविष्यवक्ताओं के पास आता है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए परमेश्वर ने अपनी बाइबल अपनी चुनी हुई विधि द्वारा लिखी और अपने चुने हुए भविष्यवक्ताओं, उन भविष्यवक्ताओं से नहीं जो मनुष्य ने चुने, परंतु भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने चुना। तब ये विश्वासी लोग जो उसके भविष्यवक्ताओं ने कहा उसके घटित होने पर ध्यान देते हैं, और ये प्रमाण कि वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि पहले उन्होंने प्रेरणा पाई, फिर वे उस घड़ी के वचन के साथ स्थिर रहे, तब ये उसके प्रमाण पत्र थे। देखिए, हमने पिछले रविवार इसी को देखा, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और हमने उदाहरण दिया कि कैसे वे बालाम और मूसा दोनों एक ही आत्मा के द्वारा अभिषिक्त थे। उनमें से एक ने कहा हम सब एक हैं, हम आकर मिलें अपनी लड़कियों को और सबको ले आएं, या हमारे पास सुंदर लड़कियां हैं और तुम लड़को यहाँ आओ और अच्छी पत्नी ले लो, ये ठीक है, हम एक ही लोग हैं, जो भी हो एक ही जाति। परमेश्वर ने उन्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं किया, उन्होंने इसे सुना। देखिए संसार और लोग कुछ थोड़ा सा बाहर निकलने की राह देख रहे हैं, कोई छोटा सा किनारे का कोई छोटा मार्ग, परंतु परमेश्वर के वचन में कोई छोटा मार्ग नहीं है। वहाँ एक ही नमूना है, आपको स्वयं को काटकर उस नमूने में बैठाना है, ना कि नमूने को काटकर अपने लिए अनुकूल बनाना। प्रत्येक को यही करना चाहिए, परमेश्वर के करने का केवल यही मार्ग है। अब ध्यान दें, विश्वासी लोग वचन की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखी गई, परंतु प्रभु परमेश्वर के द्वारा, इसलिए ये मनुष्य की पुस्तक नहीं है। किसी ने कहा ये केवल पुराने इब्रानी लेख हैं। क्या इब्रानी लोग अपने को दोषी ठहराने के लिए पत्र लिखेंगे? क्या यहूदियों का वो अच्छा राष्ट्र अपने में एक और शानदार, वे अपने अपराधों को लिखेंगे, स्वयं को दोषी ठहराएंगे? निश्चय ही नहीं। अपने ही पापों को बताने कि वे कैसे मूर्ति पूजा में गए, कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध व्यभिचार किया, नहीं नहीं, वे कभी नहीं बताएंगे। वो घमंडी राष्ट्र, ये मनुष्य की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर की पुस्तक है। और मनुष्य जो दर्शन देखता और परमेश्वर की वाणी सुनता, बहुत सी बार इसे कभी भी नहीं समझ पाता। बहुत सी घटनाओं में देखा, मनुष्य ने बाइबल नहीं लिखी, परमेश्वर ने बाइबल लिखी। ये मनुष्य की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर की पुस्तक है। ये परमेश्वर के विचार मनुष्य के होंठों के द्वारा प्रकट किए गए हैं, इसी से बाइबल बनी है। विचार का प्रकट होना वचन है, और आरंभ में परमेश्वर के विचार में उसने इसे अपने भविष्यद्वक्ता के होंठों से प्रकट किया और अपने दास के द्वारा इसकी पुष्टि की। समझे? ध्यान दें, परमेश्वर पहले से ठहराकर अपना चुनाव करता है, हर युग के लिए भविष्यद्वक्ता चुनता है। इस पर ध्यान दें, वो भविष्यद्वक्ता के स्वभाव को उस युग के अनुसार बनाता है, वो उसका व्यवहार तय करता है। जो भी वो करता है, वो उसे उस परिस्थिति के अनुकूल कर देता है, चाहे वो शिक्षित या अशिक्षित हो। वो वरदानों को व्यवहार के अनुकूल कर देता है, जो वो प्रचार करेगा वे ही वरदान उसके पास होंगे, और निश्चित युग के लिए संदेश परमेश्वर निश्चित बातों को घटित होने के लिए पहले से ठहराता है, और दूसरी बात उसका स्थान नहीं ले सकती। चिंता नहीं कि मनुष्य की कितनी उपलब्धियां हैं, इसका स्थान कोई नहीं ले सकता। वो मनुष्य के पहले से ठहराता है। हो सकता है अनपढ़ व्यक्ति को उसने उसे किसी दूसरे प्रकार का व्यक्ति ठहराया हो, वो जो भी है वो उसे शिक्षित करता है, उसके वरदान उसे देता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, और जो भी है वो कैसे स्वयं को प्रकट करता है, और जो भी वो करता है वो उस समय के मनुष्य को बनाता है कि उस समय के लोगों को पकड़े। ठीक है, वो ये करता है। प्रत्येक युग के अंत में जब कलीसिया संसार और पाप की ओर मुड़ गई थी और मनुष्य द्वारा किए गए अनुवाद की ओर झुक गई थी, जैसे कि सदा से युग के अंत में हुआ कि वे जब तक अपने धर्म ज्ञानियों और याजकों के द्वारा इतनी गड़बड़ में ना चले गए, ये सदा गड़बड़ ही हुआ। उनके अनुवाद सदा से गलत हैं, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वे गलत ना हुए हों, और परमेश्वर का वचन एक बार भी असफल नहीं हुआ कि ठीक ना हो। यही भिन्नता है। अब आप देखिए कि परमेश्वर ने बाइबल को स्वयं लिखा। अब परमेश्वर बोल सकता है। मूसा ने कहा कि वो उससे बोला, यरमयाह ने कहा कि वो मेरे मुंह में वचनों को डालता है, और परमेश्वर लिख सकता है। उसने 10 आज्ञाएं अपनी उंगली से लिखी, उसने बाबुल की दीवारों पर लिखा। और स्मरण रखें, केवल पुराने नियम के अंदर भविष्यद्वक्ताओं ने 2000 बार यहोवा यूं कहता है कहा है। निश्चय ही परमेश्वर बोल सकता है, लिख सकता है। मती, मरकुस, लूका और यहुन्ना 90% लगभग वही परमेश्वर के वचन हैं जो उसने स्वयं यीशु मसीह बोल रहा था। इसलिए यदि परमेश्वर लिख सकता है, यदि परमेश्वर पढ़ सकता है, यदि परमेश्वर बात कर सकता है, क्या वो ये सब दूसरे से नहीं करवा सकता? क्या उसने मूसा से नहीं कहा किसने मनुष्य को गूंगा बनाया या किसने उसे बोलना दिया? परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाइबल लिखी, यही उसके करने की विधि है। हर बार कलीसिया गड़बड़ में पड़ जाती है, और परमेश्वर पहले से जानता है कि वे करेंगे, क्योंकि वो हर बात को पहले से जानता है। इसलिए उसके पास उसके निश्चित भविष्यद्वक्ता उस काल के लिए तैयार रहते हैं, ताकि उसके चुने हुओं को उसके वचन के चिन्हों के और आश्चर्य कर्मों के प्रमाणित होने के द्वारा बुला ले, और उसके वचन की पुष्टि चिन्हों के द्वारा वचन की पुष्टि, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। भविष्यवक्ता के सही प्रमाणित हो जाने के पश्चात वो सही अनुवाद को देता है, परंतु वे चुने हुए जिनके पास वो भेजा गया उससे घृणा की। अब हर घटना को परखिए और देखिए यदि ये ठीक है कि नहीं। केवल वे जिनके पास वो भेजा गया, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। ध्यान दें, नहीं, वचन का हर परीक्षण हर घटना में और काल के अंत या चरम अवस्था या संगम पर, जैसा कि मैंने बहुत सी बार प्रचार किया है। नूह के युग को देखिए, न्याय से पहले चरम अवस्था में क्या घटित हुआ? नूह, ये केवल उसका ही परिवार था जिसने उस व्यक्ति का विश्वास किया, बाकियों ने उसकी आलोचना की और समस्त संसार नाश हो गया। अब्राहम के दिनों में केवल अब्राहम के झुंड ने विश्वास किया। जब दूतों ने जाकर सादोम में प्रचार किया तो केवल लूत और उसकी पत्नी और दो पुत्रियां बाहर आईं और वो मुड़ी कि नमक का खंभा बन गई। मूसा के दिनों में केवल चुने हुए इजरायली बाहर आए और फिरौन ने उससे घृणा की। एलिया के दिनों में लगभग सभी ने, केवल 7,000 मनुष्यों को छोड़ प्रत्येक ने उससे घृणा की, समस्त राष्ट्र ने। यर्मिया के दिनों में क्यों उन्होंने उस पर कच्चे फल फेंके और उसे सन की कहा? क्योंकि वो एक करवट बहुत दिनों तक लेटा रहा और दूसरी ओर भी, और चीजें लेकर चिन्ह बनाए, उन्होंने उससे घृणा की। यशाया भविष्यद्वक्ता ने उसने उस पीढ़ी को इतना दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उन्होंने उसको आर्य से काटकर दो टुकड़े कर दिया। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो वहाँ एक जंगली मनुष्य था, कोई चिल्लाने वाला पागल। वे चेले जिन्हें उसने यीशु मसीह को एक कलीसिया के समान प्रस्तुत किया, यही है वहाँ। यूहन्ना ने लोगों को तैयार किया। उसके पास कितने थे? आप दोनों हाथ की दोनों उंगलियों पर गिन सकते हैं। यूहन्ना जब यीशु आया तो कितनों को सामने प्रस्तुत कर सका? अब उसके दूसरे आगमन के विषय में क्या है, इस पर सोचें। परंतु जब सच्चे बाइबल विश्वासी वचन को खुले रूप में उस युग के लिए प्रमाणित होते देखते हैं, तो वे विश्वास करते हैं। उन्हें इससे अलग करने का कोई मार्ग नहीं कि वे विश्वास ना करें, यहाँ तक कि वे अपनी गवाही को अपने लहू से मोहर बंद करते हैं, वे इसका विश्वास करते हैं। तब ये उन पहले से ठहराए हुए लोगों के लिए है, जो उस निश्चित काल के लिए हैं, जो देखते और विश्वास करते हैं। दूसरे इसे नहीं देख सकते, वे अंधे किए गए हैं। अब आप कहते हैं कि वे इसे नहीं देख सकते। अब बालाम के समान, बालाम क्यों नहीं इसे देख सका? वो भविष्यद्वक्ता था, अभिषिक्त था। क्यों फिरौन इसे क्यों नहीं देख सका? जब वो परमेश्वर के हाथ को नीचे आकर वहाँ आश्चर्य कर्म करते देखता था, इसने केवल उसके हृदय को कठोर कर दिया। क्या ये ठीक बात है? दातान स्वयं यहूदी होकर क्यों ना इसे देख सका? वो सीधा सीधा मृत सागर में से निकल कर आया था और प्रति रात्रि उसने मन्ना खाया जो कि ताजा गिरता था, और फिर भी इसे ना देख सका। क्यों कोरह इसे ना देख सका? कैफा इसे क्यों ना देख सका? वो उस समय का धर्म प्रधान था, उस समय के संसार का। क्यों नहीं वो देख सका कि वो मसीहा था? यहूदा क्यों इसे ना देख सका? यहूदा ठीक उनके साथ था, उनके साथ साथ चल रहा था, उनके साथ आश्चर्य कर्म कर रहा था, परंतु वचन को पूरा होना ही था। बाइबल कहती है कि वे अपना स्थान लेने के लिए उठ खड़े हुए थे, वे इसी उद्देश्य के लिए उठे थे। ये बात सत्य है, रोमियो 8 ये कहता है। अब विश्वासी लोग देख सकते हैं कि वचन उनकी पीढ़ी में देहधारी हुआ, परमेश्वर बोल रहा है। अब वे सच्चे विश्वासी लोग, वे 7,000, जब वे 700 थे एलिया के दिनों में, 7,000, ठीक है। एलिया के दिनों में लगभग 20-30 लाख में से 7,000 जिन्होंने देखा कि वो ठीक था, मुश्किल से लोगों का 100वां भाग, परंतु उन्होंने देखा कि वो ठीक था, उन्होंने परमेश्वर को प्रकट होते देखा। वो बूढ़ी विधवा जिसके पास इलीशा भेजा गया, वो उन लकड़ियों को लेने गई कि रोटी सेके और अपने और अपने पुत्र के लिए उतनी रोटी सेके और फिर मर जाए। परंतु एलिया को देखिए, उसने कहा पहले मेरे लिए एक बना, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, कुप्पी खाली ना होगी और न ही तेल खत्म होगा उस दिन तक जब तक प्रभु परमेश्वर पृथ्वी पर वर्षा न भेजेगा। कोई प्रश्न नहीं। उसने लकड़ियों को रोटी सेकने के लिए उठाया और उसे दी, कहा पहले मेरे लिए बना और तब जाकर अपने लिए और अपने पुत्र के लिए बना। क्योंकि उसने ये सुना कि वो मनुष्य और उसकी ओर देखा, वो पहले से ठहराया हुआ वंश थी। उनमें से बहुत से कहते थे, देखो कि वो सन की फिर वहाँ है, उसके कारण परमेश्वर ने हमें श्रापित किया है। स्मरण रखें, एलिया कहा तू ही है जो इसराइल को दुख दे रहा है। उसने कहा तू ही है जिसने इसराइल को दुख पहुंचाया है। देखिए कौन परमेश्वर, वो किसके वचन को प्रमाणित कर रहा है, अपने ही वचन को। अब बाइबल कहती है वे इसी उद्देश्य के लिए उठाए गए थे, परंतु जब अविश्वासी, परंतु अब जब सच्चा विश्वासी उस काल में वचन को देहधारी होते देख सकता है, परमेश्वर मनुष्य के मुंह के द्वारा बोलता है और तब जो उसने कहा ठीक वैसा ही करता है, वो वही करेगा, ये तय हो गया। अब बाकियों पर ध्यान दें, चिन्हों को ना देखें। यदि आप चिन्हों को देखेंगे तो आप ऐसे ही मूर्ख बनेंगे जैसे कि संसार। झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और चिन्ह और आश्चर्यकर्म दिखाएंगे, यदि वे हो सके तो चुने हुओं को धोखा दे देंगे। वचन पर ध्यान दें, इन याजकों भविष्यद्वक्ताओं और इब्रानी भविष्यद्वक्ताओं को देखें जो वहाँ खड़े हुए हैं, सिद्ध किया दो बड़े सींगों के साथ और कह रहा है मैं परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता हूँ। ये सत्य है, मेरे पास यहाँ मेरे साथ 399 हैं और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है जो कि पुष्टि कर रहा है और कह रहा है कि वो देश हमारा है, आओ चलकर उसे ले लें। और इन सींगों के द्वारा आहा तू अपने शत्रु को अपनी भूमि पर से बाहर धकेल देगा, क्योंकि ये भूमि परमेश्वर ने हमें दी है। उस धर्मी भले मनुष्य यहोशापात को देखिए, कहा क्या तुम्हारे पास कोई और है, एक और है, 400 सहमति में हैं। उसने कहा यहाँ पास में एक है परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, वो हमेशा हम लोगों पर चिल्लाता है और हमें बताता है कि हम कितने बड़े पापी हैं और बहुत कुछ कहता है, मैं उससे घृणा करता हूँ, वो मिकाया है, इमला का पुत्र। उसने कहा ओ राजा ऐसी बात ना कहे, जाओ उसे ले आओ, हम सुने कि वो क्या कहता है। इसलिए वे जाकर उसे ले आए। उसने कहा मुझे आज रात्रि दे दो, मैं देखूंगा कि प्रभु इस विषय में क्या कहता है। आहाब ने कहा मैं तुझसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे सत्य को छोड़ और कुछ न बता। और वो व्यक्ति आया और बोला यदि तुम अच्छी संगति में आना चाहते हो तो जैसे बाकी सब कहते हैं वही कहो। मिकाय ने कहा मैं वही कहूँगा जो परमेश्वर कहता है, समझे। अगली प्रातः वे आए और राजा लोग अपने वस्त्र धारण करके फाटक पर बैठ गए, सारे धर्म उत्सव और भविष्यता वहाँ खड़े थे। कहा कट्टर अब तुम इस विषय में क्या कहते हो। कहा जाओ चढ़ जाओ। कहा परंतु मैंने इसराइल को ऐसे तितर बितर देखा जिसका कोई चरवाहा ना हो। उसने उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ता को मारा। अब दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने वहाँ खड़े हुए भविष्यवाणी की 401 के विरुद्ध, ये काफी सशक्त दिखाई पड़ता है। अब भीड़ की सम्मति में सदा सुरक्षा नहीं होती, इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ पर हैं, वे किस विषय में सलाह कर रहे हैं, वे उनकी क्या सलाह है। वहाँ राजा की कोई सुरक्षा नहीं थी और उसने सही होने के लिए भीड़ की सम्मति ली, परंतु यदि वो थोड़ा सा रुककर और मुड़कर लिपटी हुई पुस्तक को देखता है कि एलिया ने हाल में क्या कहा है, तब तक मिकाया कुछ नहीं कह सकता था, वो नहीं जानता था, परंतु हो सकता था कि परमेश्वर ने इसके लिए उसे क्षमा कर दिया हो। परंतु पहले एक भविष्यद्वक्ता होने के कारण वो परमेश्वर के पास गया कि मालूम करे कि परमेश्वर ने क्या कहा है। उसने मालूम किया कि परमेश्वर ने क्या कहा है। उसने कहा मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसने कहा स्वर्ग के सारे सलाहकार उसके आसपास जमा हुए। कहा हम में से कौन नीचे जा सकता है और आहाब को बाहर निकाल लाने के लिए, तब हम उस भविष्यवाणी को पूरा कर सकते हैं जो उसके विषय में की गई है। भविष्यवाणी को देखिए, एलिया ने पहले ही कह दिया था कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे, और इसलिए उसने कहा एक झूठी आत्मा को नीचे से ऊपर आते देखा, ऊपर उसके सामने आई, कहा मैं नीचे जाऊंगी और उसके भविष्यद्वक्ताओं के भीतर समा जाऊंगी, आहाब के भविष्यद्वक्ताओं में, और उनसे झूठ की भविष्यवाणी करवाऊंगी। अब परमेश्वर जानता था कि वे मनुष्य फूल गए हैं, और धर्म ज्ञान से इतने भर गए हैं कि उन्होंने सोचा उनके पास सारी चीजें ठीक हैं। उन्होंने उस घड़ी के संदेश पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू सफल होगी, नीचे जा। और जब मिकाया ने कहा कि इससे वे प्रेत आत्मा की अधीनता में भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन्होंने टेलीफोन का तार खींच कर निकाल दिया या रेडियो को बंद कर दिया या कुछ भी किया, जब अपने विरोध में सुना तो खड़े होकर बाहर निकल गए। परंतु देखिए क्या घटित हुआ। अब मिकाया को अपना दर्शन लिखित वचन के साथ जांचना था, इसलिए वो जानता था। उसने कहा, जब मैं आता हूँ इस व्यक्ति को जेल में डाल दो, उसे दुख का पानी और दुख की रोटी दो, जब मैं वापस आता हूँ तब मैं उसे देखूंगा। उसने कहा, यदि तू वापस आता है तो परमेश्वर ने मुझसे बात कभी नहीं की। यही है, जब वो जानता था कि उसका दर्शन ठीक वचनानुसार है उस घड़ी के लिए, ये आहाब का समय था। भाई बहनों, ये बाबुल से बाहर बुलाए जाने का समय है। सांझ के उजियाले यहाँ पर हैं। जब उजियाला है तो उजियाले में चलो। ध्यान दें, विश्वासियों ने वचन को प्रकट होते देखा और उसका विश्वास किया। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है, मेरे वचन को। इस युग का मेरा चिन्ह, झूठे का वे अनुकरण नहीं करेंगे। अब आइए हम अपने विषय को लें, क्योंकि मैं देखता हूँ मैं दूर हट रहा हूँ। मैं प्रार्थना पंक्ति पर अधिक जोर देना चाहता हूँ। आइए अपने विषय पर वापस चलें, जिसे हमने विचार के लिए लिया है। अब यहाँ एक मिनट। अच्छा देखिए, ये फिर से होगा जैसे कि ये होता रहा है। परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता यहुन्ना भेजा, जैसे कि उसके वचन ने कहा था, मलाकी 3 में प्रतिज्ञा की थी, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ कि मार्ग को तैयार करे। यहुन्ना ने यही गवाही दी। और हम यशाया 40:3 में भी यही पाते हैं कि यशाया ने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होगा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। समझे, वे सारी भविष्यवाणियां और जल्दी देखिए कि पवित्र वचन ने उसे प्रमाणित किया है। तब उन्होंने कहा कि तू कौन है, क्या तू मसीह है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू यर्मिया है, भविष्यद्वक्ताओं या उनमें से एक? उसने कहा, मैं नहीं हूँ, परंतु मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूँ, जैसे कि भविष्यद्वक्ता यशाया ने कहा। आप सोचते हैं कि वे विश्वास करेंगे? नहीं श्रीमान। क्यों? क्योंकि वो उनकी कलीसिया के द्वारा नहीं आया, वो उनमें का नहीं था। देखिए, वो 9 वर्ष की आयु में जंगल को चला गया था और 30 वर्ष का होकर लौटा। धर्म विद्यालय में जाने के हिसाब से उसका संदेश बहुत बड़ा था। ये वो था जो मसीह का परिचय कराने वाला था, और हर कोई उसे इधर उधर खींच रहा था। और उसके पिता जकरिया की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने उसे जंगल में भेज दिया, और वो एक याजक था, परंतु वो अपने पिता की लीक पर न चला, क्योंकि भविष्यद्वक्ता इस प्रकार की चीजों में से निकल कर नहीं आते। वे कठिनाइयों के देश जंगल में से निकल कर आते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानता वे कहाँ से आते हैं, या वे दृश्य पर कैसे आते हैं, या उनका कोई इतिहास। वे बस आते हैं, वचन को प्रचार करते हैं, और परमेश्वर उन्हें वापस बुला लेता है, और वे अलग चले जाते हैं। उस पीढ़ी को दोषी ठहराते हैं और उसके वचन में आगे बढ़ते जाते हैं और महान दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलीसिया ने उस पर विश्वास न किया, क्योंकि वे उसे नहीं जानते थे। उनके पास उनके अपने समर्पण का कोई, उनकी पुस्तक में कोई लेख नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। देखिए, उन्होंने परमेश्वर के प्रमाणित वचन का विश्वास नहीं किया, जो शब्द शब्द प्रमाणित था। समझे, मलाकी 3:2 पवित्र लेखों ने उसे प्रमाणित किया। मलाकी 3 और यशाया 40:3, ये दोनों लेख आने वाले व्यक्ति के विषय में बताते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो। वो हर विशिष्टता से मेल खाता था, उसे भविष्यद्वक्ता होना था। मैं तुम्हारे पास एलिया को भेजूंगा, और वो वहाँ हर प्रकार की कठोरता में था। ध्यान दे, उसका स्वभाव किस प्रकार से एलिया से मिलता जुलता था। एलिया जंगल में रहने वाला मनुष्य था, ऐसा ही यहुन्ना था बाहर। वो कोमल मनुष्य नहीं था, वो कठोर मनुष्य था। फिर ध्यान दें, एलिया स्त्रियों से घृणा करता था। उसने इजाबेल को उसके श्रृंगार आदि के विषय में बताया और कहा, साथ और अलग हटना है। ऐसे ही यहुन्ना था। इजाबेल ने एलिया को मारने का यत्न किया, अपने देवता की शपथ खाई कि वो उसके सिर को अलग कर देगी। ऐसा ही हिरोदियास ने किया। समझे, सदा उनके संदेशों पर ध्यान दें, ध्यान दें कि उन्होंने क्या किया। अब हम पाते हैं कि यदि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा होता और देखा होता कि बाइबल ने क्या कहा है और उस व्यक्ति के स्वभाव पर ध्यान दिया होता और वो उस समय के वचन के साथ कितना सिद्ध था, उन्हें जान जाना चाहिए था कि वो वही था। लगभग आधा दर्जन लोग ही जान पाए, ये ठीक बात है, आधा दर्जन से अधिक लोग अनुभव ही नहीं कर पाए। वे उसे सुनने के लिए गए परंतु उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया, समझे? क्यों? उन्होंने भविष्यवाणी के प्रमाणित होने को जो उनके समय में था विश्वास नहीं किया। ध्यान दें, वे उस पर हंसे, उसे जंगली चिल्लाने वाला कहा, अनपढ़ सनकी जो स्कूल नहीं गया, प्रहार, चिल्लाना, लाना, ले जाना और आदि आदि। जैसा कि होता है उन्होंने उसकी शिक्षा से परखा, उन्होंने उसे उसकी भाषा शैली से परखा, किस प्रकार के वो कपड़े पहनता है, भेड़ की खाल लपेटे रहता है, ऊंट की खाल का पटुका, उसके सारे शरीर पर बाल थे, पानी में चलता था, कोई कलीसिया नहीं, कोई प्रचार मंच नहीं, कोई सहयोग नहीं, वे इसे स्वीकार नहीं कर सके, वे संसार के ईश्वर की आराधना कर रहे थे, समझे? मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं आए जैसे यम्ब्रेस और यन्नेस थे, परंतु जिस प्रकार आप करना चाहते हैं कि वचन के द्वारा मूल संदेश को परखें, तब आपको मिल गया कि ये किस काल में है और उस युग के लिए क्या भविष्यवाणी है। यूहन्ना की भविष्यवाणी परमेश्वर के अपनी ही योजना के द्वारा प्रमाणित है। देखिए कितनी सिद्ध, बाइबल ने कहा प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है और यीशु वचन था और यूहन्ना वचन के आने और उसके पूरा होने की भविष्यवाणी कर रहा था और यीशु वचन पानी में भविष्यद्वक्ता के पास आया। कितना सुंदर, कितना सफल है, समझे? उन दिनों में वचन दुर्लभ था। यहाँ भविष्यद्वक्ता ये कहता हुआ आ रहा है, मैं वचन की आवाज हूँ। उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए? कहा मैं उसके जूते खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, परंतु एक तुम्हारे मध्य में खड़ा हुआ है यहीं कहीं, वही है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथों में है और अपने खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा और भूसी को ना बुझने वाली आग में जलाएगा और बीज को भंडार में ले जाएगा। ओ क्या ही भविष्यद्वक्ता है। यीशु ने कहा आज के दिन तक स्त्री से कोई इतना महान पुरुष कभी नहीं जन्मा। ओ कितना गरजने वाला है, वो कैसे जानता था कि वो कहाँ पर खड़ा है? वो बिल्कुल ठीक जानता था, उसने परमेश्वर से सुना और ये ठीक वचन के साथ था, इसलिए उसने चिंता नहीं करी कि लोगों ने क्या कहा, इसलिए उसने चिंता नहीं करी कि लोगों ने क्या कहा, उसने उसे प्रचार किया और इसकी भविष्यवाणी की जो भी हो। अब ध्यान दें, जब मनुष्य उसका पक्ष लेता है जो सत्य है, तब परमेश्वर इस बात के लिए बाध्य है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को सत्य प्रमाणित करे। जब मूसा वहाँ मिस्र में, उसने कहा मैं वहाँ जंगल में था और झाड़ी को जलते देखा और वो भस्म नहीं हुई, और मैं झाड़ी के पास गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक महान अग्नि स्तंभ था और आवाज ने कहा मैं वो हूँ जो हूँ, और उसने मुझसे कहा कि इस छड़ी को ले और यहाँ आकर उन आश्चर्य कर्मों को कर और परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करेगा। अपनी छड़ी उठाई और वहाँ कुटकियाँ आ गई और कुटकियाँ और अंधकार और आदि आदि, और उस भविष्यद्वक्ता को प्रमाणित करने के लिए वो उन विश्वासियों को वहाँ पहाड़ के पास ले गया और परमेश्वर उसी अग्नि स्तंभ में नीचे उतरा ठीक उसी पर्वत पर और सिद्ध किया कि वो ठीक था। अब देखिए कि वो इन दिनों में ठीक वही कर रहा है। अब वचन भविष्यद्वक्ता के पास आया और उसे सच्चा व्यक्ति प्रमाणित किया, वही व्यक्ति जो पवित्र वचन ने कहा वही होगा। अब जल्दी से, परंतु फिर से यीशु भविष्यवाणी के मनुष्य के द्वारा दिए गए अनुवाद से भिन्न रूप में आया। मनुष्य के पास अनुवाद था कि क्या होगा, प्रेस्बिटेरियन सोचते हैं ये उनके लिए होना चाहिए। ध्यान दें, जब परमेश्वर कुछ करता है, ध्यान दें, हर दूसरा संगठन एक के साथ उठ खड़ा होता है। जी हाँ, हमेशा से ऐसा ही रहा है, उनके पास हर कहीं यम्ब्रेस और यन्नेस हैं। ध्यान दें, उन्होंने वचन का भाग कहा परंतु भविष्यद्वक्ता के वचन के अनुसार हर अक्षर के साथ, जैसा होता रहा वे फिर से चूक गए और उसे भाग्य बताने वाला कहा, एक शैतान, बालजबूब, और कहा ये स्वयं को परमेश्वर बनाता है, जबकि उन्हें अपनी बाइबल के अनुसार समझ जाना चाहिए था कि वो परमेश्वर था। ध्यान दें, उसकी भविष्यवाणी यशाया 9:6 द्वारा हुई थी, कहा उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता रखा जाएगा। उसके बाद और कोई पिता ना होगा, क्योंकि आरंभ में पहला पिता वही था, केवल वही पिता है। उसने कहा तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, न ही इसके बाद। वो पराक्रमी परमेश्वर है और अनंत काल का पिता, युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, निश्चय ही। अब उन्होंने उसके साथ वही किया जो सब भविष्यवक्ताओं ने बताया कि वे ऐसा करेंगे, जैसा कि वे इस लुदिकियन युग में कर रहे हैं। उसे कलीसिया से बाहर कर दिया, अंधे, नंगे और ये नहीं जानते, ठीक जैसा भविष्यवक्ता ने कहा, बाइबल के भविष्यवक्ता ने। मनुष्यों के रीति रिवाजों द्वारा अंधे किए गए, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, वचन को अपनी कलीसियाओं से बाहर, जैसा कि होता है, जैसे कि उनके लिए भविष्यवाणी है। अब ध्यान दें, अब जल्दी से, अब इसमें चूके ना, यहाँ मूल पाठ है। कैसे यीशु ने स्वयं को उन दो चेलों पर प्रकट किया कि वो उनका मसीहा है। अब सारी आंखें इस ओर थीं और उस देश में। अब यहाँ चूके नहीं, हमने आपको बताने का यत्न किया है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर द्वारा लिखा गया, उन होंठों के द्वारा और मनुष्य यांत्रिकी से। परमेश्वर स्वयं लिख सकता है, परमेश्वर स्वयं बोल सकता है, परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, परंतु उसने इसे करने के लिए मनुष्य को चुना, क्योंकि मनुष्य जिसने इसे लिखा वो परमेश्वर का भाग है, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल को लिखा है। यहाँ तक कि मनुष्य अपने विचारों में नहीं जानता था कि वे क्या लिख रहे हैं, वे उस लिखे से असहमत हो सकते थे, परंतु उन्होंने इसे लिखा, वे असमर्थ। बाइबल ने कहा पुराने मनुष्य जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए, परमेश्वर ने उनके हाथ चलाए, दर्शनों में उनकी आंखें चलाईं, वे और कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय उसके जो वो देख रहे थे। वे कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनके पास उनकी जुबान, उंगलियों और हृदय के भाग का पूर्ण नियंत्रण था, परमेश्वर से पूर्णतः प्रभावित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल ने कहा वे ईश्वर थे, वे परमेश्वर का भाग थे, वे परमेश्वर की परिपूर्णता था। ध्यान दें किस प्रकार यीशु वचन ने इन दो टूटे हृदय वाले चेलों पर प्रकट किया कि वो उनका मसीहा है, मसीह, प्रतिज्ञा का वचन। ध्यान दें उसने क्या किया, उसने भविष्यवाणी को आकर्षित किया। ध्यान दें मूर्खों भविष्यवक्ताओं के लेखों पर विश्वास करने में मंदमतियों। अब उसने कभी ये नहीं कहा अच्छा क्या कलीसिया इस विषय में क्या कहती है। उन्होंने उसे पूरी कहानी सुनाई, वे सारी घटनाएं जो घटी थी जानते थे, वे बहुत उदास थे। उन्होंने उसे बताना आरंभ किया क्या तू यहाँ नया परदेशी है, या तू नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या घटित हुआ। उसने कहा क्या बातें, जैसे कि उसे नहीं मालूम। देखिए कभी कभी वो ऐसे कार्य करता है ये देखने के लिए कि आप इस विषय में क्या करेंगे, समझे। कहा कैसी बातें, ये कौन था, क्या घटित हुआ, क्या तू यहाँ पर परदेशी है। और वे उसी व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसके साथ वे 3.5 वर्ष रहे थे और उसे नहीं जान पाए। कौन सी बातें, क्या हुआ। अरे उन्होंने कहा नासरत का यीशु जो कि एक भविष्यवक्ता था, हमारे मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं, वो सब लोगों के सामने वचन और कार्य में सामर्थ्य था। हमने उसे उन कार्यों को करते देखा कि वो इस युग के लिए परमेश्वर का प्रमाणित भविष्यवक्ता था, हम ये जानते हैं। और हमें विश्वास था कि वो छुड़ाने वाला होगा, कि वो इज़राइल को छुड़ाएगा। तब वो मुड़ा और बोला तुम निर्बुद्धि हो, उसके विषय में भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमति हो, जो उसके विषय में कहा क्या घटित नहीं होगा। उस पर अब ध्यान दो और भविष्यवाणी पर वापस जाओ, विश्वासियों के लिए कैसी झिड़की है। दावा किया था कि वे उस पर विश्वास कर चुके हैं। ध्यान दें कि उसने विषय को किस प्रकार पकड़ा, उसने कभी भी सीधे सीधे आकर ये नहीं कहा मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। वो ये कर सकता था क्योंकि वो था, परंतु ध्यान दें उसने स्वयं को वचन में प्रमाणित किया, तब वे जानेंगे। यदि उसने ये कहा होता तो वो कह सकता था और ये उस प्रकार से नहीं होता, परंतु जब वो गया और सब भविष्यवक्ताओं पर बोलना आरंभ किया जो उसके विषय में कहा गया था और उन्होंने ये देखा, तब वे अपने में ये कह सकते थे यदि वे परमेश्वर की संतान थे। परंतु उनके ध्यान को जो भविष्यवक्ताओं ने पहले से कहा उधर ले गया और समय में देखने के लिए कहा कि मसीह उसका युग प्रकट होगा। वो जैसे यूहन्ना वचन बाइबल उनके संदेश को प्रमाणित करे। कोई भी सच्चा भविष्यवक्ता यही करेगा, बाहर निकलकर नहीं आया और कहता है मैं वो हूँ, मैं हूँ। वो परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है, देखा। परंतु उसने कहा पवित्र वचनों में वापस जाओ, देखा। वो अपने कार्य करने की पद्धति में कभी असफल नहीं हुआ, समझे। उन्होंने कहा हम मूसा को जानते हैं, उसने कहा यदि तुम मूसा को जानते होते तो मुझे भी जानते। उसने कहा मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, पवित्र शास्त्र में ढूंढो, उसमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और पवित्र शास्त्र जो मेरी ही गवाही देता है, जाओ और जाकर वचन में ढूंढो और इसे देखो। यहाँ पर वो अपनी कार्य पद्धति कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदला, वो कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, समझे। ध्यान दें, वो सीधा इन दो चेलों के पास वापस गया, क्लियोपास और उसका मित्र अमाउस के मार्ग पर, और कहा पवित्र वचनों के लिए उनसे आग्रह किया, कहा तुम क्यों इतने निर्बुद्ध हो उन प्रत्येक वचनों के लिए जो भविष्यवक्ता ने मसीह के विषय में लिखे, उसे पूरा ही होना है। ओ क्या ही दिन है। यूहन्ना ने भी वही किया, पवित्र शास्त्र में ढूंढो, पीछे देखो, कहा वहाँ जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, समझे। यही है जिसे उन पर इसको स्पष्ट कर देना चाहिए था, ठीक है। आज इसे स्पष्ट होना चाहिए, वो बातें जो हम देखते हैं, जो पवित्र आत्मा कर रहा है। उसने एक बार कहा पवित्र शास्त्र में ढूंढो, और हम वो आज हमसे यही करवाना चाहता है। ध्यान दें, बाइबल ने कहा उसने मूसा की भविष्यवाणी से आरंभ किया, उसने मूसा से आरंभ किया और सारे भविष्यवक्ता, परंतु उसने मूसा से आरंभ किया, एक भविष्यवक्ता। मूसा ने कहा तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम लोगों के मध्य में से, लोगों में से प्रभु परमेश्वर भविष्यवक्ता को उठा खड़ा करेगा। अब वो ये कह सकता था क्लियोपास और तुम्हारा मित्र जो यहाँ है, क्या मूसा ने नहीं कहा कि इन दिनों में प्रभु परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को उठाएगा, और ये मनुष्य जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, क्या उसने उस योग्यता से मेल नहीं खाया। अब मूसा ने ये भविष्यवाणी की, और अब तुम्हारे पास सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से भविष्यवक्ता नहीं है, और यहाँ ये मनुष्य उठा, और इस मनुष्य के आगे आगे चलने वाला क्या था, क्या तुमने कहा, समझे इसे। और सब भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में कहा, उसके युग के विषय में, वो उनसे बोला, निश्चय ही ये बहुत ही रुचिकर होता उसके सुनने में, क्या आप उसे सुनना पसंद नहीं करते। मैं उसे सुनना पसंद करता, उसे सुनना जो उसने कहा, वही भविष्यवक्ताओं ने उसके विषय में कहा, परंतु उसने ये कभी नहीं कहा कि वो वही था। उसने उन्हें केवल भविष्यवाणी के द्वारा दिखाया, उसने केवल ये कहा कि भविष्यवक्ता ने कहा है कि ये घटित होगा, समझे। कुछ मिनटों के लिए हम थोड़ा वापस चलें और उन वचनों को सुनें जो उसने अपने लिए उल्लेख में दिए। यहाँ ध्यान दें, वचन स्वयं अपना ही उल्लेख कर रहा है, वचन स्वयं को स्वयं ही उल्लेख कर रहा है। ये नहीं बताता कि वो वही था, परंतु केवल वचन स्वयं के विषय में बोलता है, तब वे जान जाते हैं कि वो कौन था। वचन का अक्षर वचन का उल्लेख कर रहा है, वचन देह में अक्षर के वचन का उल्लेख स्वयं में पूर्णतः प्रमाणित होते हुए। इधर देखिए, अब हम उसे उल्लेख करते हुए सुने कैसे। अब हम जानते हैं कि उन्हें अंतिम घटनाओं का सारांश दे दिया गया था, क्रूस पर चढ़ाए जाने का और पुनरुत्थान की कथा का, कब्र का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। अब वो अपने विषय में भविष्यवाणी के वचन में सीधा चला गया। अब हम थोड़ा सोचे कि उसने ये कहा, उसने इससे कुछ अधिक कहा, परंतु ध्यान दें, हम उसे ऐसे कहने दें, उसे कहते हुए सुने जकरिया 11:12 निकालें। और क्या भविष्यवक्ता के अनुसार मसीह को बेचा नहीं जाना था चांदी के 30 सिक्कों में। तुमने अभी कहा कि ये मनुष्य चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया। निकालिए, आप इन वचनों को ले रहे हैं, जकरिया 11:12। और तब उसने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया कि दाऊद ने भजन संहिता में क्या कहा, भजन संहिता 41:9, उसे अपने मित्रों के द्वारा धोखा मिला। और फिर से जकरिया 13:7 में वो अपने चेलों के द्वारा छोड़ दिया गया, और भजन संहिता 35:11 झूठे गवाहों के द्वारा दोषी ठहराया गया। तुमने अभी कहा उसके साथ हुआ था। यशाया 53:7, वो अपने दोष लगाने वालों के सामने चुप रहा। यशाया 50:6, भविष्यवक्ता ने कहा उन्होंने उसको कोड़े मारे। भजन संहिता 22 उसे क्रूस पर चिल्लाना था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या उसने परसों दोपहर बाद यही नहीं किया? भजन संहिता 22 फिर से 18 उसके कपड़े उन्होंने आपस में बांट लिए, क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? भजन संहिता 22:7-8 उसके बैरियों द्वारा उसका ठट्टा उड़ाया गया, कलीसिया। फिर से भजन संहिता 22 उसके शरीर की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, परंतु उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए। उसने कहा उस समय उसके हाथ पीछे से पकड़े हुए थे, कोई संदेह नहीं। यशायाह 53:12 ने कहा वो अपराधियों के मध्य में मारा जाएगा। यशायाह 53:9 ने कहा वो धनवान के संग गाड़ा गया। भजन संहिता 16:10 ने कहा मैं उसके प्राणों को अधोलोक में न छोड़ूंगा, न ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। मलाकी 3 नहीं था इस मनुष्य के आगे आगे चलने वाला? ओ मैं उसे ये उल्लेख देते हुए सुनना चाहता हूँ, भविष्यवाणियों को देखिए, ध्यान दें। वो सारे प्रतीकों में से होकर निकला, इसहाक के विषय में उत्पत्ति 22 में कैसे परमेश्वर ने इसहाक को प्रतिछाया में दिखाया, कैसे पिता अब्राहम ने अपना पुत्र लिया, लकड़ी को लेकर पहाड़ पर गया और अपने ही पुत्र को भेंट चढ़ाया। अब ये उनकी समझ में आने के लिए आरंभ था। उसने उन्हें बताया कि वे उस दिन की भविष्यवाणी को देखने में कितने मंदमति थे और कैसे ये उनकी समझ में आने लगा, और इस सब को पूरा होते हुए देखते हुए जो कि अंतिम कुछ दिनों में घटित हुआ था, अंतिम 2 या 3 वर्षों में उस युग की भविष्यवाणी प्रमाणित हुई। तब वे क्रूस पर चढ़ाए गए अपने मित्र यीशु को जान गए, जिसने इसके हर वचन को पूरा किया। तब वे जान गए कि वो मनुष्य सच में वही मसीह था जिसे मृतकों में से जी उठना था। कब्र उसे रोक ना सकी, मैं अपने पवित्र को सड़ने ना दूंगा। भविष्यवाणी का एक भी वचन कभी असफल नहीं हो सकता, और वो जी उठा। तो फिर आज प्रातः जो कब्र पर से संदेश लाने वाले ठीक थे, वो मरे हुओं में से जी उठा, वो जीवित है, वो वही मसीहा है। क्यों इसे असफल मत करो? उसका व्यवहार, उसकी सेवकाई और हर चीज जो उसने किया वचन के द्वारा, जो भविष्यद्वक्ता ने कहा, प्रमाणित हुआ, कहा इस दिन में घटित होगा, ये यहाँ हो गया। तब वे जान गए कि ये वही था उनका क्रूस पर चढ़ाया गया मित्र यीशु जिसने ये किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके हृदय जब वो उनसे बातें कर रहा था तो उत्तेजित हो गए थे। अब वे 6 मील चले और ऐसा लगा बहुत थोड़ा समय। और यहाँ इन्होंने एक और चीज कि आप जानते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी पर प्रमाणित होते हुए 6 घंटे का उपदेश सुना। उसने सारे मार्ग पर जाते हुए यही बातें की। जैसे ही उन्होंने मार्ग पर चलना आरंभ किया वो बाहर आया, क्योंकि वो ठीक वहीं यरूशलेम में था। 6 घंटों के पश्चात 60 फरलांग वे अमाउस 6 मील के लिए मार्ग पर थे। यही जो है, उसने प्रचार करके 6 घंटों में भविष्यवाणी की पुष्टि की। मेरे 3 पर मुझे दोषी न ठहराएं, तब देखें, समझे? परंतु ध्यान दें, उन्होंने प्रचार किया, वो उन्होंने भविष्यवाणी पर 6 घंटों के उपदेश की पुष्टि प्रमाणित होते हुए सुनी। अब ये सांझ का समय आ रहा था। आप जानते हैं कि वो आजकल और सर्वदा एक सा है। ये तब हुआ कि उसने समझने के लिए उनकी आंखें खोल दी। इब्रानियों 13:8 वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। सांझ के समय घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। इस आधुनिक घड़ी में क्या हो रहा है सरलता से प्रमाणित किया जा सकता है, यदि आप केवल समय की भविष्यवाणी का विश्वास करें। हाँ, निर्बुद्धियों, समझने में मंदमतियों, विश्वास करने में हल्के, आप इस पर विचार करते रहें। ये विश्वास कि सारे भविष्यद्वक्ताओं ने मसीह के विषय में जो कहा, क्या उसे घटित नहीं होना था? अब उसने इन सारी बातों को परख लिया और दर्शाया कि भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा, वही घटित होगा। तब वे समझने लगे। इसलिए उसने कहा ऐसे ही करो, उसे इसी प्रकार से करते जाना था। उन्होंने इस मनुष्य को पसंद किया। उन्होंने कहा, तूने हमें कुछ दिया है, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो कहीं पर जीवित है। वे उससे बातें कर रहे थे और नहीं जानते थे, इसलिए वो, और कोई संदेह नहीं, उसने उन्हें उदास होकर देखा और उसने आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वे उसे निमंत्रण दें। और यही वो आज रात्रि प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे निमंत्रण दें। ध्यान दें, जब इन चेलों ने उसे निमंत्रण दिया कि मेज पर उनकी संगति में आए, ये तब था कि उसने कुछ इस प्रकार किया जो उसने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था, और उनकी आंखें खुल गईं। वे उसके व्यवहार और विधि को जानते थे। वे जान गए कि उसने क्या किया। उसने वैसे ही किया जैसे पहले किया था, और उन्होंने कहा, ये तो वही है। और एकदम से वे इस बात को चिल्लाने के लिए उठे, और वो अंतर्धान हो गया। और जहां उन्होंने इस उपदेश को सुनने के लिए 6 घंटे लिए थे, हो सकता है पैरों को 20 मिनट का आराम देने के पश्चात बाकियों को बताने के लिए उल्टे पैर चल दिए, वास्तव में वो जी उठा है, वो वास्तव में जीवित है। मित्रों, ये मलाकी 4, संत लूका 17, संत यहुन्ना 15, ओ बहुत सारे प्रकाशित वाक्य 10, और बहुत सारी भविष्यवाणियों का पूरा होना है, जो कि ठीक इस दिन के लिए उन पर उंगली रखी जा सकती है। और मती मरकुस की पुस्तक में भी, जहां उसने कहा, ये बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्यकर्म आकाश में प्रकट होंगे, और लोग उनको उड़नतस्त्री कहते हैं, सामर्थ और विचार की गति से गायब हो जाती हैं, ज्ञान जो उसमें हो सकता है, वो लिख सकता है, वो बोल सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो महान अग्नि स्तंभ कल, आज और सर्वदा एक सा है। पृथ्वी पर दृश्य दिखाई पड़ते हैं, पैरामिड रूपी धुआं हवा में उठता है, और जहां की नमी नहीं हो सकती ना कुछ, 30 मील ऊपर घटित होने से 1.5 वर्ष पहले बता दिया गया था कि ये एक प्रकार से होगा। तब चित्र को घुमाकर और देखो कि ये कौन नीचे देख रहा है। जो भी बताया गया उसमें एक शब्द भी असफल नहीं हुआ, और यहाँ परमेश्वर का वचन सत्य की पुष्टि कर रहा है। और अब फिर से ये सांझ का समय है। मुझे अचरज होगा यदि वो अनुग्रह में वापस आएगा और अब कुछ करेगा जैसा उसने पहले किया। आइए हम उससे प्रार्थना करें और मांगें। घटनाएं प्रमाणित भविष्यवाणी से प्रमाणित हुई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि उन बातों को समझ सकें जो बातें हमें जाननी चाहिए, तेरे वचन को समझें। और अब प्रभु, अब हमने 2000 वर्ष में लिखी हुई पुस्तकों पर उपदेश सुना, और इन अंतिम दिनों में यहाँ ये फिर से वापस आ गया, और अब ये सांझ के समय की ओर है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और उनमें से बहुत सो ने इन युगों में आपसे बातें की हैं, और हो सकता है कि इस महान दिन के साथ साथ वो ना तो रात या दिन था, जैसे कि भविष्यवक्ता ने कहा, परंतु सांझ के समय में उजियाला होगा। यीशु कब्र में से जी उठकर शमाउन और स्त्रियों पर प्रकट हुआ, और उन्हें दर्शाया कि वो जीवित था, वो प्रातः थी, और फिर सांझ को वो फिर वापस आया, परंतु दिन में उनके साथ चला, उनके अंधेपन के लिए उन्हें फटकारा, तब फिर उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया सांझ के समय में। परमेश्वर, आज रात्रि हमारी संगति में आइए कि हम वचन के चारों ओर हैं। परमेश्वर, आज लोगों में ये विश्वास बड़ा कठिन है, परंतु मैं धन्यवादित हूँ कि आपने कुछ लोगों को बुलाया है और उन्हें अनंत जीवन के लिए अभिषिक्त किया है, और आपने कहा, जितनों को पिता ने मुझे दिया मेरे पास आएगा। और अब जबकि सांझ के उजियाले चमक रहे हैं, जबकि प्रभु आपने ऐसा होने दिया कि एक भी भविष्यवाणी, सैकड़ों जो की गई, कभी भी एक बार असफल नहीं हुई, तब सच में यदि ये प्रमाणित है तो ये आप ही हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना परिशुद्ध नहीं हो सकता। बाइबल के समान कोई मनुष्य नहीं लिख सका, कोई भी इस 1600 वर्षों की अवधि में 40 विभिन्न लेखकों के द्वारा ये लिख सकता था और इसमें एक भी त्रुटि नहीं। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि आप स्वयं को इब्रानी 13:8 का होते हुए प्रकट करेंगे कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, और वे कार्य जो आपने तब किए आप आज करते हैं। आपने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की है इन अंतिम दिनों में, जबकि संसार सदोम और अमोरा की भ्रष्टता में विद्यमान है, हम इन लड़कों को देखते हैं जो कि लड़कियों के समान कपड़े पहने हैं और लड़कियों को लड़कों के समान कार्य करते देखते हैं, और इस भ्रष्ट युग में स्त्रियों और पुरुष को देखते हैं। देखिए, कामुकता का आकर्षण मूर्ति पूजा के समान हो गया है। सुसमाचार एक ओर धकेल दिया गया है और लुदेसियन कलीसिया में नग्नता। ओ परमेश्वर, कैसी घड़ी है! प्रभु आ यीशु, स्वयं को हम पर प्रकट कर, क्योंकि हम ये यीशु के नाम से मांगते हैं। अब जबकि आपने अपने सिरों को झुकाया हुआ है, अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, तो मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है? क्या आप विश्वास करते हैं जो बातें आज की जा रही हैं वे भविष्यवाणी का पूरा होना है? क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप विश्वास करते हैं जब वो यहाँ शरीर में प्रकट हुआ उस दिन के लिए, और जो कार्य उसने वहाँ किए उन्हें यहाँ पर फिर से इस दिन में दोहराना था? भविष्यवक्ता ने इस प्रकार से कहा है, बाइबल ने ऐसा कहा है, सारा का सारा पवित्र वचन पूरा होना चाहिए, ये असफल नहीं हो सकता। उसने कैसे स्वयं को प्रमाणित किया? वो भविष्यवक्ता होने के द्वारा जो मूसा बोला था, लोगों के हृदय के भेदों को जान गया। स्त्री ने उसका कपड़ा छुआ, उसने घूम कर कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब शमौन पत्रस उसके पास आया, वो उसका नाम जानता था, उसे बताया कि वो कौन था, उसका पिता कौन था, और वही प्यारा यीशु मरा नहीं है, वो सदा के लिए जीवित है, परमेश्वर की महिमा हो। और अब मैं इस सांझ के समय में विश्वास करता हूँ, उसने हमें फिर से एक साथ बुलाया है। ओ प्रभु यीशु, हमारे मध्य में आजा, हमें छोड़कर आगे ना बढ़, आकर आज रात्रि हमारे साथ रहे, जब तक ये रात्रि पूरी हो, तब कल हमें अपने साथ जाने दे, ताकि हम तुझे तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जान सकें, ताकि तेरा प्रेम और अनुग्रह और दया हमारे साथ हो। ओ अनंत परमेश्वर, इन बातों को ग्रहण करें। हम जानते हैं कि केवल अकेला परमेश्वर ही इन्हें प्रदान कर सकता है। इस घड़ी के गंभीर भाव में हम ये कहें, परमेश्वर हमारे पिता, हमारे निर्बल शरीर आपके लिए मंदिर हैं, परंतु प्रभु आपका पवित्र करने वाला अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा अब आए, हमें प्रत्येक संदेह और प्रत्येक घबराहट, प्रत्येक संदिग्ध और संदेहवाद की प्रत्येक पंक्ति से शुद्ध करें, जो भी हम में हो, ताकि हम बिना किसी संदेह के स्वतंत्र हों, बाहर आए, पत्रस के समान साहस से स्वीकार करें, तू मसीह है, कल, आज और सर्वदा एक सा है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन सत्य है। हम जरा देखें, इसके पहले कि हम ये प्रार्थना पंक्ति आरंभ करें, प्रभु स्वयं को हम पर प्रकट करें, जैसा कि आपने कहा लूत के दिनों में था, जब अब्राहम वो बाहर बुलाया गया झुंड प्रतिज्ञा के पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। लूत वहाँ नीचे आधुनिक बिलीग्राम और ओरल रॉबर्ट को सुन रहा था, वो नामधारी व्यवस्था वहाँ एक राष्ट्र के समान, परंतु अब्राहम बिना किसी संस्था के परदेशी था। ये छोटा सा झुंड उस भूमि पर इधर उधर भटक रहा था जिसका वो वारिस था, और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक दिन पेड़ की छाया तले, जबकि वे बैठे हुए विश्राम कर रहे थे, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ गया। दो दूत नीचे सादों में चले गए, और परमेश्वर मनुष्य की देह में ये सिद्ध करता है कि वो वही था। उसने कहा, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कुछ दिनों पहले वो अब्राम था, और SARRA सारे, सारा नहीं, राजकुमारी, और आपने उसे राजकुमारी के नाम के द्वारा पुकारा, राजा की पुत्री। आपने अब्राहम को उसके नाम अब्राहम से पुकारा, राष्ट्रों का पिता। और आपने कहा मैं तुझसे भेंट करने वाला हूँ। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के हृदय को कैसे कूदना चाहिए था, वो जान गया कि आप तब कौन थे। आश्चर्य नहीं उसने आपके पैर धोए और जितना भी भोज्य पदार्थ उसके पास था वो निकाल लाया और आपके सामने सबसे अच्छा वाला रखा। वो जानता था कि ये परमेश्वर उसके सामने है। तब उसने कहा सारा कहाँ है, जैसे कि वो न जानता हो। और आप अब्राहम ने उससे कहा कि वो तंबू में है, वो तंबू में है आपके पीछे। और आपने कहा कि क्या घटित होने जा रहा है, और उसने अपने हृदय में इस पर संदेह किया। और तब आपने अब्राहम से कहा सारा ने इस पर क्यों संदेह किया कि ये बातें नहीं हो सकती, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है। ओ परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन, आपने कहा जैसे सादोम के दिनों में था अन्य जातियों का संसार नष्ट होने से पहले इसी दशा में होगा, अन्य जाति का युग, हम यहीं पर हैं, सादोमी बीज के कोष से। और तब आपने कहा कि मनुष्य का पुत्र जिसका सदा भविष्यद्वक्ता के समान उल्लेख किया गया उस घड़ी में प्रकट होगा। ओ परमेश्वर तेरे वचनों को पूरा करता है, हम तेरे विश्वासी बालक निष्कपट हृदयों से प्रतीक्षा करते हैं कि हमें विश्वास दे प्रभु कि जब हमारी प्रार्थना पंक्ति हो तो लोग विश्वास करेंगे। ये सांझ का समय है पिता, परमेश्वर के पुत्र का सांझ का उजियाला, वो जो था जो है और आएगा, स्वयं को भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट करता है कि वो यीशु के नाम में बना है। आमीन। अब मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। परंतु ये विचित्र बात है कि कैसे जब हम यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ मैं खड़ा होता हूँ और लोगों को चुनौती देता हूँ और राष्ट्रों में दूर संचार से जुड़े हुए कि परमेश्वर अब भी परमेश्वर है, वो असफल नहीं हो सकता। और जो उसने प्रतिज्ञा की वो करेगा, वो ये करने के लिए कभी भी असफल ना होगा क्योंकि उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं उसमें अपना पवित्र विश्वास रख सकता हूँ जिसमें कि उसने कहा, इसलिए मैं उसके आगमन की प्रतीक्षा करता हूँ, मैं उसके कभी भी प्रकट होने की राह देख रहा हूँ क्योंकि उसने कहा उस घड़ी जिसमें तुम सोचते भी ना होगे, संसार सोचता भी ना होगा, तब वो प्रकट होगा। और अब जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं यहाँ अपने आराधनालय में हूँ और यहाँ थोड़े से लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, भाई राइट और थोड़े से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, परंतु बहुत से हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। और मेरे पास ये कहने का कोई तरीका नहीं है कि परमेश्वर आज रात्रि इसे करेगा। हमने उसे ये करते हुए वर्षों वर्षों से देखा है, परंतु संभव है वो आज रात्रि ये ना करे, मैं नहीं जानता, ये उस पर निर्भर करता है। वो प्रभु सत्ता संपन्न है, वो जो चाहता है वो करता है, उसे कोई नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है। वो एकांत में वास करता है अपनी इच्छा और अपने मार्गों में, परंतु क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा की है मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये करे, हमारे निमित्त नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है, परंतु हो सकता है कुछ अपरिचितों के लिए कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए। अब अभिषेक हम पर है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो मुझे कितना अभिषेक करता है, उसे आपको भी अभिषेक करना है निश्चय ही कि विश्वास करें। अब मैं प्रार्थना पंक्ति को लेना चाहता हूँ और जितना मैं कर सकता हूँ रोगियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब या तो हम पंक्ति को ले सकते हैं कि लोगों को बुलाएं और प्रार्थना पंक्ति यहाँ पर लाकर और प्रत्येक के लिए जो रोगी है प्रार्थना करें। मैं समझता हूँ कि हमारे सेवक भाई हमारे साथ यहाँ आ जाएं और आप लोगों पर हाथों को रखें, निश्चय ही हम ये कर सकते हैं। या फिर हम अपने पिता से मांग सकते हैं, वही केवल एक है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मेरे हाथ एक मनुष्य के हाथ हैं जैसे आप मनुष्य के। परंतु बात यह है ये मानव के हाथ नहीं है जो ये करते हैं, ये परमेश्वर का वचन है, वचन में विश्वास है जो ये करता है। इस विषय में कोई वैज्ञानिक चीज नहीं है, ये पूर्णतः अवैज्ञानिक है। मसीही के पास उसके हथियारों में एक भी चीज नहीं है जो वैज्ञानिक हो, क्या आप ये जानते हैं? प्रेम आनंद शांति सहनशीलता भलाई नम्रता सज्जनता धीरज विश्वास पवित्र आत्मा विज्ञान के द्वारा ये चीजें ना दिखने वाली हैं और केवल यही चीज है जो वास्तविक और ठहरने वाली है। हर चीज जो आप देखते हैं पृथ्वी में से आती है और वापस पृथ्वी में चली जाती है, परंतु वे चीजें जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते परंतु इसे देखना स्वयं को घोषित करता है, ये अमरता का संसार है। क्या आप विश्वास करेंगे यदि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करे और दर्शाए कि वो जीवित है, उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो उसने आरंभ में किए? इस संदेश के पश्चात क्या आप इसे अपनी चंगाई के रूप में स्वीकार करेंगे? परमेश्वर इसे प्रदान करे। अब मैं इस घर में से किसी से भी पूछ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं आप कौन हैं या आप कहाँ से हैं। मैं आपसे केवल सत्य भाव से ये कह रहा हूँ कि इस संदेश का सत्य होने का विश्वास करें। ये वो संदेश है जो परमेश्वर के पास बाइबल में इस घड़ी के लिए है कि आज रात्रि यीशु मसीह यहाँ पर है और जीवित है। अब लगभग आप सब लोग मेरे लिए जानते हैं, मैं ठीक इसी नगर में पाला पोसा गया हूँ। मेरे पास व्याकरण स्कूल की शिक्षा भी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और आप मुझे लंबे समय से जानते हैं, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सामने ईमानदार और सच्चा जीवन बिताया है। मैं ढोंगी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मेरे आलोचक भी ये नहीं कहते, वे बस कहते हैं कि आप ढोंगी नहीं हैं, परंतु आप केवल साधारण रूप में गलत हैं। आप केवल अज्ञानता में गलत हैं, जानबूझकर नहीं। मैं नहीं सोचता कि मैं अज्ञानता में गलत हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे संदेश की पुष्टि करता है और इसे आपको बताना चाहिए कि ये कौन है। और आप स्पष्ट रूप से मुझे ये कहते हुए सुनते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, इसलिए ये उसे ही होना चाहिए। क्या ये ठीक बात है? परमेश्वर में विश्वास रखें, तब इस ओर देखें और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। यदि वो जैसा उसने पहले किया कर सकता है तो फिर वो अब भी परमेश्वर है। आप इसका विश्वास करते हैं? आप इसका विश्वास करते हैं? एक महिला जो मेरे सामने बैठी है, मेरी ओर देख रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, सच्ची है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, उसे मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। क्या आप सोचती हैं कि परमेश्वर आपके हृदय के भेद को जानता है, आपकी इच्छाओं या आपके पापों या जो कुछ भी है? आप सोचती हैं कि वो जानता है? आप सोचती हैं कि वो मुझ पर जो आपका पाप है प्रकट कर सकता है, जो आपने किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपकी जो भी इच्छा हो? यदि वो ये करता है तो क्या इससे आपका विश्वास उस पर बनेगा और जान जाए कि ये वही होना चाहिए? क्या आप इसे उसी के समान स्वीकार करेंगी? ये आपका पाप आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपने उसे स्वीकार कर लिया है, परंतु आप उसके पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। ये आपको मिलेगा। मैं देखता हूँ कि ये उसके आर पार हो गया, ताकि आप जान सकें कि मैं उस महिला की ओर देख रहा था, वो मेरी ओर देख रही थी। मैं आपको पवित्र आत्मा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ इस साधारण महिला की ओर देखिए, जो यहाँ मेरे पैरों के नीचे बैठी है। जब मैंने ये कहा, यही वो चीज है जो वो चाहती थी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप विश्वास करती हैं कि आप इसे प्राप्त करेंगी बहन? तो फिर अपना हाथ उठाएं। जानकारी में मैंने इस महिला को कभी नहीं देखा। देखिए, ये व्यक्ति यहाँ नीचे अपना सर झुकाए हुए बैठा है, उसका कॉलर ठीक नहीं है और आदि आदि। आपको मूत्राशय का रोग है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? यदि आप स्वीकार करते हैं तो अपना हाथ उठाएं। ठीक है, परमेश्वर ने आपके निवेदन को आपको दे दिया है। ये युवा पुरुष यहाँ पर बैठा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहता है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये आपको देगा? श्रीमान, आपकी सफेद धारी की टाई जो पीछे लटक रही है, परमेश्वर ये प्रदान करेगा। ये पुरुष यहाँ अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो एक संस्थान में है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसे चंगा कर देगा, उसे स्वस्थ कर देगा? आप विश्वास करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। आपका हाथ आपके गले पर जो है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हृदय की स्थिति को ठीक कर सकता है जो आपको परेशान कर रही है, पेट का रोग जो आपको है? इस समय आप वहाँ बैठे हुए इससे पीड़ित हैं, क्या ये ठीक बात है? आप विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा करता है? तो आप इसे ले सकते हैं। आमीन। आप देखिए कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। उन लोगों से पूछें, यदि मैं उन्हें जानता हूं तो। मैं नहीं, परंतु वो। आमीन। देखिए सामने दीवार की ओर, वहां पर ज्योति वहां नीचे है, एक व्यक्ति के ऊपर है जो वहां बैठा है, वहां पीछे रीढ़ की हड्डी की दशा से पीड़ित है। वो यहां से नहीं है, वो जॉर्जिया से है। श्रीमान डंकन, अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, परमेश्वर पीठ की परेशानी को चंगा कर देगा। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पीछे एक व्यक्ति पीठ की परेशानी के साथ बैठा है, मेरी ओर देख रहा है। मैं उसे नहीं जानता, परंतु वो श्री थॉमसन है। आप विश्वास करते हैं? श्रीमान खड़े हो जाएं वहाँ पीछे, ताकि मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। ये ठीक बात है, परंतु आप यहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी पीठ का रोग ठीक हो गया। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। सांझ के लगभग उजियाला होगा, क्या आप नहीं देखते? आज रात्रि वो यहाँ पर है। वो महान मैं हूँ है, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्या आप संतुष्ट और सहमत हैं कि ये यीशु मसीह स्वयं को प्रकट कर रहा है, स्वयं को भविष्यवाणी में प्रमाणित कर रहा है? आँख के विषय में चिंता ना करें, परमेश्वर बीमारों और दुखियों को चंगा करता है। कितने लोग हैं जो यहाँ पर, कितने बीमार हैं? जरा आपके हाथ देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि ये खिंचाव और अधिक कार्यभार है। क्या आप में से किसी के पास प्रार्थना पत्र है? मैं नहीं जानता कि आप लोगों को यहाँ कैसे लूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं नहीं जानता कि इसे कैसे करूँ। आप देखिए दीवार पर, देखिए मैं इन लोगों को कैसे यहाँ अंदर लूँ। यदि एक गलियारा जाम हो गया और उधर दूसरा वाला जाम हो गया तो हर कोई एकदम रुक जाएगा। सुनिए, मेरी सुनिए, क्या मैंने कभी आपको कोई बात प्रभु के नाम में बताई जो कि घटित ना हुई हो? क्या ये ठीक बात है? हर बात हमेशा ठीक निकली। मैंने कभी भी आपसे अपने जीवन में एक भी पैसा नहीं मांगा। क्या मैंने मांगा? एक बार भी नहीं। अपने जीवन में एक चंदा नहीं लिया। मैं यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ आपको धोखा देने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ इस घड़ी के लिए परमेश्वर का वचन प्रकट करने के लिए हूँ। मैंने आपको सत्य बता दिया है और परमेश्वर ने गवाही दी है कि ये सत्य है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वचन ये कहता है कि यदि विश्वासी अपना हाथ बीमार पर रखे, यीशु ने कहा वे चंगे हो जाएंगे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? तब यदि परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या विश्वास नहीं करते कि वो अभी करेगा? अब अपने हाथ एक दूसरे पर रखें और एक मिनट तक रुके रहें। अब प्रार्थना ना करें, केवल अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। और यहाँ पर मैं अपने हाथ, और वहाँ बाहर के देश में, और मैं स्वयं अपने वाले को इन रुमालों पर रख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ओर एक मिनट के लिए देखें। परमेश्वर ने क्या अधूरा छोड़ा है? देखो वो कैसा है, जो वचन हमने पढ़ा, भविष्यवाणियाँ जो कि हमने आपको बताई कि यीशु ने स्वयं को भविष्यवाणियों के द्वारा प्रमाणित किया। अब समय को देखें, और इन अंतिम 3 सप्ताहों में जहाँ हमने समय को यथा स्थान पर रखा जिसमें हम रह रहे हैं, उसे देखिए जो हमने पढ़ा है। झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या है, और लगभग वही चिन्ह जो चुने हुओं को धोखा दे देंगे। वचन किस प्रकार से प्रकट हुआ, कैसे इस युग के ईश्वर ने झूठ को अंधा कर दिया, लोगों के हृदय को, और कैसे उस परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवाणियों द्वारा कहा कि ये बातें लुदिसिया के युग में घटित होंगी। कुछ भी अधूरा नहीं छूटा जो किया ना गया हो। परमेश्वर यहाँ वैसे ही परमेश्वर है जिसने उन लोगों से इमाउस में बातें की, जिसने स्वयं को भविष्यवाणियों द्वारा प्रमाणित किया जो उसके विषय में पहले से कही गई। वो आज रात्रि यहाँ पर अपनी उपस्थिति को पहले से बताई गई भविष्यवाणी के द्वारा, जो इस युग के लिए है, प्रमाणित कर रहा है। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। क्या आप इसका विश्वास कर सकते हैं? तो फिर अपने हाथ एक दूसरे पर रखें, अपने लिए प्रार्थना ना करें, परंतु अपने तरीके से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिस पर आपका हाथ है, क्योंकि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, संदेह ना करें। अब यदि आप देख सकें जो मैं देख रहा हूँ, और आप जानते हैं मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पर खड़े होकर, यदि आप देख सकें और आपका विश्वास उस महान पवित्र आत्मा को खींच सके जो यहाँ हवा में तैर रहा है, जिसका चित्र विज्ञान ने उतारा है और इसे इस भवन में घूमते हुए देखें और उस स्थान को ढूंढने का यत्न कर रहा है जहाँ उतरे, लंगर वाले स्थान को ढूंढने का यत्न कर रहा है। केवल इसका विश्वास करें मेरे भाई, उसने इसे पवित्र वचन के द्वारा प्रमाणित किया है और आदि आदि, ये ठीक बात है। अब जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है उसके लिए सच्चाई से प्रार्थना करें, वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नासरत के प्रिय यीशु, क्योंकि हम सचेत हैं प्रभु वचन के द्वारा कि आप यहाँ पर हैं, प्रतिज्ञा के द्वारा आप यहाँ पर हैं, जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या तीन एकत्र होंगे मैं उनके मध्य में हूँ, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। टेलीफोन की उन तरंगों पर बाहर होने दे कि महान पवित्र आत्मा हर श्रोता गण की सभा में जाए, होने दे कि वही पवित्र आत्मा जिसको हम यहाँ कलीसिया में देख रहे हैं, होने पाए कि ये प्रत्येक पर उतरे और वे भी इस समय चंगे हो जाएं। हम शत्रु को फटकारते हैं, शैतान को, मसीह की उपस्थिति में। हम शत्रु से कहते हैं कि वो पराजित हो गया है। प्रतिनियुक्त पीड़ा प्रभु यीशु की मृत्यु और तीसरे दिन की जय जयकार पुनरुत्थान में और उसकी यहाँ प्रमाणित उपस्थिति कि वो आज रात्रि हमारे मध्य में जीवित है 900 वर्षों पश्चात। जीवित परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक हृदय को विश्वास और सामर्थ्य से भर दे और चंगाई के गुण जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हैं, अब इस महान गोल ज्योति से इस कलीसिया में उसकी उपस्थिति में कौन प्रमाणित हुआ, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रदान करें। होने पाए कि ये रुमाल जिन पर हम प्रार्थना कर रहे हैं ये बीमारों और दुखियों के पास जाएं जो इसके लिए विचार करते हैं, होने दे कि वही पवित्र आत्मा जो यहाँ स्वयं को हर रोगी के ऊपर प्रमाणित कर रहा है, जो यहाँ अपने हाथ रखे हुए हैं, होने पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके हृदय में विश्वास के साथ इतनी भर जाए जब तक कि उनकी देह का रोग चंगा ना हो जाए। परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह की उपस्थिति में मांगते हैं और यीशु मसीह के नाम में, जैसा कि हम यीशु मसीह के दास इसे मांगते हैं, आमीन। अब आपके हृदयों में मैं चिंता नहीं करता कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। क्या आप अपने हृदयों से, अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके निवेदन को प्रदान कर चुका है? मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक हाथ जो मैं देख सकता हूं ऊपर उठा। यदि आप विश्वास करते हैं तो स्मरण रखिए कि ये पूरा हो चुका। आप जो बाहर टेलीफोन प्रसारण पे हैं, यदि आपने अपने पूरे हृदय से विश्वास कर लिया है, जैसा कि सेवक लोग आप पर हाथ रखे हुए हैं और आपके प्रिय लोग आप पर हाथ रखे हुए हैं, यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं तो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। महान पवित्र आत्मा वो यहाँ आज रात्रि आराधनालय में है। मैं उसे लोगों के ऊपर मंडराते हुए देखता हूँ, स्वयं को यहाँ दीवार की ओर दर्शाया है और एक मनुष्य पर नीचे उतरा और पूरे भवन से होते हुए यहाँ आया। हृदय के गुप्त विचारों को बता रहा है, उसके उपस्थिति का प्रमाण ये दर्शाने के लिए कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो हमारे मध्य में है, वो परमेश्वर है, कभी ना असफल होने वाला परमेश्वर। और क्या हमारे हृदयों में उत्तेजना ना हुई और अब नहीं हो रही है? क्या ये जानते हुए कि हम जीवित यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, जिसकी महिमा और तारीफ सदा की है? कौन यहोवा सर्वशक्तिमान के प्रकट स्वरूप में है? कौन आग के खंभे के रूप में जलती झाड़ी में उतर आया कि भविष्यद्वक्ता के ध्यान को आकर्षित करे? कौन पर्वत पर उतरा था और जो कोई भी छुए तो मार डाला जाए सिवाय मूसा और यहोशू को छोड़कर? ये किस प्रकार था कि उसने इजराइल की संतान की उनके मार्गों में जंगल में अगुवाई की? आज के बाहर बुलाए गए लोगों की प्रतिछाया वो यहाँ है। वैज्ञानिक खोज द्वारा भी उसने स्वयं को विज्ञान के समक्ष प्रमाणित किया है। और अपने प्रत्येक व्यवहार के द्वारा और अपनी हर भविष्यवाणी के द्वारा वो बातें जिनकी भविष्यवाणी उसके लिए आज के दिन के लिए करने के लिए की गई, ताकि उसे कल आज और सर्वदा एक साथ बनाए सिद्ध रूप में प्रमाणित हो गया। क्या ये हमारे हृदयों में उत्तेजना के लिए पर्याप्त नहीं है? परमेश्वर आपको आशीष दे। अब एक मत के साथ हम खड़े होकर कहें, अब मैं यीशु मसीह को बचाने वाला और चंगा करने वाला स्वीकार करता हूँ, और उसके अनुग्रह के द्वारा इस समय से आगे को, ओ परमेश्वर, कोई भी अविश्वास कभी भी मेरे हृदय में प्रवेश न करे, क्योंकि मैंने देख लिया है कि भविष्यवाणी आज के दिन की पूरी हुई। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और अब यहाँ पर से अपने वचन की पुष्टि कर रहा है। इस घड़ी का भविष्यवाणियाँ जो उसके लिए लिखी गई अब हमारे मध्य में पूरी हुई हैं। वो मेरा बचाने वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा सब कुछ। प्रिय परमेश्वर, हमारी गवाही को सुन और हमें दिन प्रतिदिन जीवन की रोटी दे, और हम हृदय की गहराई से हम तेरी महिमा करते हैं ओ परमेश्वर। सामर्थी, हम तेरी महिमा करते हैं, भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओ क्या ही क्षण है, क्या ही समय है।
Just only believe. All things are possible. Only
हम इसे इस प्रकार से गा सकते हैं। क्या ये आपकी गवाही है? अब जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने झुके हुए सिरों के साथ भाई वाइल यहाँ पर हमें प्रार्थना में विसर्जित करने के लिए खड़े हैं। भाई ली वाइल ये आराधनालय के लिए लेखक और साहित्य और पुस्तकों के लिए और आदि आदि, बहुत ही बहुमूल्य भाई, बहुत सी बेदारी सभाओं में मेरे साथ रहा है। चाहता हूं कि मेरे पास अवसर होता कि हर एक सेवक को यहां ऊपर लाता और उनसे बातें करता। आप समझते हैं कि मैं वास्तव में हर सेवक आप लोगों को यहां पाकर हम आनंदित हैं। सारे जन साधारण विभिन्न कलीसियाओं के लोग इससे अधिक और क्या कि हम आप लोगों को यहां पाकर प्रसन्न हैं। और वास्तव में हमारी ये प्रार्थना एक दूसरे के लिए है, परमेश्वर आपके साथ हो जब तक हम फिर से मिलें। अपने झुके हुए सिरों के साथ और अपने उठे हुए हाथों के साथ हम इसे फिर से गाएं, परमेश्वर के लिए मिठास के साथ।